بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج جی ہمارا چوتھا سیشن ہے اس سیریز پر، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے وجود کے بارے میں کیا اعتراضات جو نیو فزکس ہے اس کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. آج ہم بیسیکلی جس چیز پر کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ سٹیون ہاکنگ کی نو باؤنڈری کنڈیشن، جس کو دا ہارٹل ہاکنگ سٹیٹ بھی کہتے ہیں. یہ اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کر دوں تو ایسے ہے کہ کائنات جب بہت ہی چھوٹی تھی تو اس وقت اس میں ٹائم کا کانسیپٹ موجود نہیں تھا، یہ اسمپشن یا ہائپوتھیسس ہے. لیکن آج ان کے لیکچر میں، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم اس بات کو مکمل کر دیں، تو تین مزید کانسیپٹس میں ان اے نٹ شیل وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ایک ری کیپ بڑی پکچر کے ساتھ میں اس کو جوڑوں گا جو آج چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ورنہ آپ کو بات ہو سکتا ہے سمجھنے میں دقت ہو. اس کے بعد ہم آ جائیں گے نو باؤنڈری کنڈیشن پر، جس کو میں نے کہا ہے کہ ارلی یونیورس میں صرف سپیس تھی اور ٹائم جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو یہاں سے بھی خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر یا اس کا جو پہلا ایکٹ تھا کریشن کا، کہ وقت نہیں تھا تو کسی چیز کو کریٹ کرنے کا کیا مطلب، یعنی جو بھی کریشن ہوگی وہ وقت میں ہوگی. وقت نہیں تھا تو کسی خدا کی انٹروینشن کی پھر کیا جگہ باقی رہ جاتی ہے. یہ سٹیون ہاکنگ نے اس کو بالکل ان نٹ شیل اپنی جو لاسٹ انکمپلیٹ کتاب ہے اس کے اندر بیان کی ہے. اس کو ہم آج دیکھیں گے، اور ساتھ ملٹی ورس کا کانسیپٹ بھی کم از کم آج کے لیکچر میں میرے یہ پیش نظر تھا کہ یہ نو باؤنڈری کنڈیشن اور اسی سے ملتا جلتا، اسی کے ساتھ ہی پھوٹتا ہے کانسیپٹ اس میں سے، جو کہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے کہ جو جب کائنات وجود میں آئی تو ایک کائنات نہیں تھی، بہت ساری کائناتیں تھیں. اور اگر بہت ساری کائناتیں تھیں تو ان میں سے ایک میں زندگی ایسے پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کو ہم نے دیکھنا تھا. اگلے لیکچر میں میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم خدا کو اور لاز آف فزکس کو دیکھ لیں، کہ ان دونوں چیزوں کو بڑا انٹرمنگل کیا جاتا ہے کہ خدا کی جگہ لاز آف فزکس نے لے لی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے بات. تو ہم نے تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھنا تھا کہ لاز آف فزکس کیا ریپلیس کر سکتے ہیں خدا کے کانسیپٹ کو. اس پر ہم کچھ بات کر چکے ہیں، اسی کی کنٹینیوٹی میں نے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی، تو یہ آج اسی ٹاک میں ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد جی جو بہت ہی ٹرمپ کارڈ ہے ایتھس کا یا نیو ایتھس کا آپ کہہ لیں، کہ مان لیا کہ کائنات کا خالق خدا ہے تو پھر خدا کا خالق کون ہے. تو اس کو بھی اگرچہ اس پر میں نے ایک مکمل حال ہی میں کتاب لکھی ہے جو پرنٹ میں ابھی جانی ہے، لیکن اس کا جو بالکل کرکس ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. تو اس پر مزید چیزیں آپ پھر دیکھ لیجئے گا اس کتاب کے اندر انشاءاللہ ان ڈیو ٹائم. اور کچھ باقی بھی، بلکہ میں آپ کو لٹریچر وغیرہ ایک اس کے آخر میں بتا دوں گا جس میں آپ اس طرح کے سوالات کو دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لٹریچر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جو رکھے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو گلمپسز مل جائیں گے اس سوال کے، کیونکہ بڑا یہ ہاٹ کوسچن ہے. لیکن بہرحال یہ جو نو باؤنڈری کنڈیشن ہے جو سٹیون ہاکنگ اور ہارٹل ان دونوں نے پریزنٹ کی، یہ عام طور پہ آپ کو چیز نہیں ملتی، تو اس کو میں ضرور پریزنٹ کر دوں گا. لیکن یہ بھی ایک بڑے پرسپیکٹو کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ ان اے سینس یونیورس کو اس میں اٹرنل مان لیا جاتا ہے. اٹرنل ان دا سینس آف کہ جو پرائمورڈیل یونیورس تھے، جو ارلی یونیورس تھے، اس میں ٹائم کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو جب ٹائم کا کانسیپٹ نہیں تھا تو اس سینس میں وہ اٹرنل ہوئی، کہ بھئی وہ اب نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ شروع ہوئی، اس وقت نہیں تھی. اور وہی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، تو یہی کانسیپٹ اس کے ساتھ ہے. اور یہ اس کانسیپٹ سے پھر آگے بہت سارے ملتے جلتے کانسیپٹ جو آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گے وہ پھوٹتے ہیں یا کم از کم انٹر لنکڈ ہے. تو صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اس کانسیپٹ کو دیکھ کر تو سٹیون ہاکنگ کے ایک یا ہارٹل کے ایک بالکل ایک متعین کانسیپٹ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ایک پوری دنیا ہے جو پھر آپ کو تھوڑی تھوڑی اختلافات کے ساتھ یہی پوائنٹ کہ کائنات اٹرنل مان لیا جائے اس کو، یہ آپ کو چیز مل جاتی ہے. تو بغیر کسی مزید انٹروڈکشن کے میرے خیال آپ ہم شروع کرتے ہیں. पहले थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप दे दूं, ये मेरा ख्याल है लाजमी है, लेकिन हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि एज लेस एज पॉसिबल हम इसको डिटेल में जाएं और टाइम स्पेंड करें इस पर। बहुत तफसील से सब कुछ आप पहले देख चुके हैं। देखिए, अब जो नो बाउंड्री कंडीशन की तरफ मैंने आपको लेकर जाना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप इस डिपिक्शन को जरा एनालाइज करें कि कायनात में हम जो बिग बैंग की बात करते हैं कि एक बहुत ही जीरो डायमेंशनल स्पेस थी, यानी ना होने के बराबर एक स्पेस थी, या ऑलमोस्ट जीरो उसको कह लें, उससे कायनात जो है वो गुब्बारे की तरह फूटी है और इसके गुब्बारे के कोई एजेस नहीं है। तो आप ये ध्यान में ना रखिएगा कि कोई एजेस हैं इसके, बल्कि ये कोई स्पेस फूट रही है गुब्बारे की तरह। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जो कि स्टीवन हॉकिंग ने भी काम किया है, उन्होंने ये किया है कि इस गुब्बारे को आप इसमें से हवा निकालते चले जाएं। देखें, ये जो आपके सामने एकदम बिग बैंग से फूट कर ये पूरी कायनात नजर आ रही है ना आपको इस डिपिक्शन में, ये अब रिवर्स हो रही है। देखें, रिवर्स हो के तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंगनेस एक नुक्ते में समा जाएगी। तो इस नुक्ते पर स्टीवन हॉकिंग वापस गए हैं और वहां पर जाके उन्होंने दो काम किए, एक तो क्वांटम फिजिक्स को अप्लाई किया, दूसरा आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी है और जनरल रिलेटिविटी है। जनरल रिलेटिविटी जो ग्रेविटी की थ्योरी है, और स्पेशल रिलेटिविटी में वो टाइम के, डिस्टेंसेस के, और वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लेकिन उसमें ज़ूम किया गया है कि वो एक स्पेशल केस है, उसमें ग्रेविटी शामिल नहीं है। ठीक है, तो इन अ नटशेल ये कि स्टीवन हॉकिंग ने क्वांटम फिजिक्स और हॉकिंग हॉटल कहना चाहिए, दूसरे साइंसदान में उनके साथ हैं, लेकिन एनीवे हॉटल को लोग ज्यादा जानते नहीं है तो स्टीवन हॉकिंग का नाम आ जाता है। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को और जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसको मिलाकर समझने की कोशिश की है कि कायनात को हम अगर जैसे आप रिमोट कंट्रोल लेकर रिवर्स करें और वो एक नुक्ते में समा जाए तो वहां पर क्या हुआ होगा। ठीक है, ये अभी हमें अगली जो हमारी पिक्चर है उसके साथ जोड़ देती है। देखिए, स्पेस मैंने आपको पहले बताया था और आपको इसकी डिपिक्शंस भी कुछ दिखाई थी कि आप जब कायनात को छोटा करते चले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक छोटा सा स्पेक ऑफ स्पेस, एक कतरे का भी कोई करोड़वें हिस्से का स्पेस आप अपने जहन में लेकर आए, वो इतनी छोटी सी से कायनात वजूद में आई होगी ना। तो अब वो जो स्पेस है उसको इतना अगर हम छोटा कर दें और हम उस स्पेस को एनालाइज करें जो हमारे इर्द गिर्द स्पेस पाई जाती है, तो क्या सूरत हाल बनेगी। स्टीवन हॉकिंग ने ऐसा किया है कि उसको रिवाइंड कर दिया और अब स्पेस का एक स्पेक रह गया। अब वो स्पेस का जो स्पेक है उसको हम इस दुनिया में एनालाइज करते हैं कि वो कैसा होगा। तो जब हम उसको एनालाइज करने के लिए जाते हैं बड़ी स्पेस की, तो क्या बात, इसके अंदर तो देखे ना आपके जो जमीन के आसपास की स्पेस है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी गैसेज, सारा कुछ है। अच्छा, अब वो ये करते हैं कि इसमें से ये सारा कुछ भी निकाल देते हैं क्योंकि ये तो उस वक्त मौजूद नहीं थी चीजें। तो अभी इस कायनात के अंदर हम उसको बिल्कुल इन सारी चीजों से खाली कर देते हैं, बिल्कुल उसको पाक करने की कोशिश करते हैं इन सब एलिमेंट से। तो पीछे हम देखते हैं कि फिर भी स्पेस पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होती, चाहे वो बड़ी स्पेस हो, चाहे उसको बिल्कुल आप छोटा कर दें, आप इतना छोटा उसको कर दें कि स्पेस का बिल्कुल एक स्पेक रह जाए, उसको आप एनालाइज करें तो वो फुल ऑफ एक्टिविटी होती है, वो एम्प्टी कभी नहीं होती, और ना इस कायनात के अंदर स्पेस कभी एम्प्टी हो सकती है। इसको भी हमने बड़े तफसील से देखा था, वो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ उसको जोड़कर। तो अब होता क्या है कि छोटी सी स्पेस को एनालाइज करते हैं, वो फुल ऑफ एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी कैसी हो रही होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स बन रहे, टूट रहे होते हैं, बन रहे टूट रहे होते हैं, जिसकी तरफ अभी हमारे रेहान भाई ने भी बात की थी। तो आप यहाँ पर जो पार्टिकल्स बनते टूटते आपको नजर आ रहे हैं, ये क्वांटम सिमुलेशन है उसकी। यहाँ पर आपको जाहिर है कि पार्टिकल उस तरह गोल और बिल्कुल स्मूथ नजर नहीं आएंगे। तो जरा आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक और आपको डिपिक्शन दिखा देता हूँ, ये राइट साइड पे। इसमें टाइम जो है ना वो बहुत स्लो दिखाया गया है, लेकिन असल में एक बहुत ही छोटे लेवल पे स्पेस के अंदर वो कभी खाली नहीं होती, उसके अंदर मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, और जब वो बनकर निकलते हैं, देखें ये आप ज्यूम कर लें कि ये ब्लू वाला है ये मैटर पार्टिकल है और रेड वाला एंटी मैटर पार्टिकल है। ये इसकी पूरी आगे एक दुनिया और डिटेल है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल, पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, ये पार्टिकल्स इस किस्म के, इस नोयत के होते हैं, मैटर एंटी मैटर इनको इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जो ही ये बनकर निकलते हैं आपस में टकराते हैं और गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो स्पेस जो है बेसिकली, ये आप जो आपको येलोइश चीज, माफ कीजिएगा, ब्लूइश चीज पीछे नजर आ रही है, इसको आप एम्प्टी स्पेस ख्याल करें। एम्प्टी स्पेस के अंदर कुछ एनर्जी होती है जो कि इस तरह से पार्टिकल्स की सूरत में मैनिफेस्ट हो रही होती है, और ये पार्टिकल्स दोबारा अनाइलेट कर देते हैं, गायब हो जाते हैं और स्पेस में जाकर एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो स्पेस हमेशा हमेशा एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आप समझ लें कि स्पेस मौजूद होगी तो एनर्जी उसकी प्रॉपर्टी के तौर पर मौजूद होगी, और एनर्जी होगी तो उसमें से ये चीजें निकल रही होंगी जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बंध रहे टूट रहे गायब हो जाते हैं उसमें से। ठीक है, अब ये होगी स्पेस, हमने जो इसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया है अभी अपनी हमारी इधर की स्पेस। तो स्टीवन हॉकिंग ने और मिलोडिनो जो उनके साथ एक और फिर ऑथर थे जिन्होंने ये इसको पेश किया है, हम में से इसको अब बाकी लोगों का जिक्र नहीं करते, बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल वो ऑथर्स, हम स्टीवन हॉकिंग का ही नाम लेते हैं। स्टीवन हॉकिंग ने अब जबकि एज्यूम किया है कि कायनात जो है, बिल्कुल सही अजम्पशन है कि जब बिग बैंग से फटी होगी तो वापस उसको गुब्बारे को लेकर जाए तो बिल्कुल छोटी सी स्पेस होगी ना, तो वो ऐसी स्पेस होगी जैसे अभी हम ये स्पेस एनालाइज कर रहे हैं उसको, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होंगे, पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होंगे। अच्छा, इसको फिर ये पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे, ये स्टीवन हॉकिंग ने अपने एक एक स्पेशल पेपर में इसको कॉन्सेप्ट को बयान किया कि ये पार्टिकल जिस तरह से बन रहे टूट रहे होते हैं ना, उसी तरीके से स्पेस भी बन रही और टूट रही होती है, या बन रही बन और टूट सकती है। ये तो पार्टिकल्स है ना यहाँ पर आपको, यानी ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैटर पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एंटी मैटर पार्टिकल है, इसी तरह क्वार्क एंटी क्वार्क, ये वो जिस तरह ये पार्टिकल्स बन रहे होते हैं। तो इसको लॉरेंस क्राउस ने, या यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, बेस्ट सेलर है, बड़ी मशहूर किताब है, इसमें इस एक चैप्टर में इसकी वजाहत की है कि इसी तरीके से स्टीवन हॉकिंग ने ये चीज शो की अपने पेपर में कि स्पेसिस भी बन रही टूट रही होती है। अब हम उस स्पेस में चले गए हैं जो स्पेस बिल्कुल प्राइमोर्डियल यूनिवर्स की स्पेस थी, और उस स्पेस में क्योंकि वो इतनी छोटी थी, तो अब क्वांटम लॉज, यही वाले क्वांटम लॉज से क्या मुराद है, क्वांटम फिजिक्स का ये वाला एस्पेक्ट कि जिसको हम क्वांटम वैक्यूम कह देते हैं या क्वांटम स्पेस उसको आप बोलते हैं, ठीक है, उस क्वांटम स्पेस के अंदर पार्टिकल्स बन रहे और टूट रहे होंगे, एक चीज ये होगी। और दूसरा ये कि उसमें क्वांटम ग्रेविटी की हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन स्टीवन हॉकिंग ने ये किया है कि इस पिक्चर के अंदर आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसको भी शामिल कर दिया। तो इन दोनों से जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो इस तरह की स्पेस की आती है कि एक बहुत छोटी सी स्पेस है जिसमें से मजीद स्पेसेस जो है ना, पार्टिकल्स जैसे मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स निकलते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स हम उनको बोलते हैं, उसी तरीके से उसमें से स्पेसेस भी निकलती हैं। ठीक है, तो ये स्पेसेस जिस तरह से निकलती हैं, इनको निकलते हुए आप ज़ूम अगर करना चाहते हैं तो जैसे कोका कोला के ऊपर होता है ना थोड़ा सा फोम होता है, उसमें से बबल्स बन रहे टूट रहे होते हैं, तो उसी तरीके से यूनिवर्सेस बन रही और टूट रही होती है। तो इसको आप एक और एनालॉजी से समझ सकते हैं, ये जो इस कार्टून के अंदर आपको ये जो गर्ल है इसको आप यहाँ से पिक्चर में से बाहर निकाल लें, आप ये जो फोम है इस पर कंसेंट्रेट करें, तो ये फोम के अंदर से देखें ये बबल्स निकल रहे हैं, इसमें से इसको अगर आप प्योर स्पेस कंसिडर करें तो प्योर स्पेस में से और स्पेसेस छोटी छोटी निकल रही हैं। ठीक है, ये जो स्पेसेस निकल रही हैं, इस तरीके से हमारी कायनात भी उसी प्राइमोर्डियल स्पेस में से निकली होगी। मैंने आपको वजह बता दी क्यों, क्योंकि अभी स्पेस को देखें तो उसमें से भी इसी किस्म के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, स्पेस भी स्टीवन हॉकिंग ने शो किया कि निकल सकती है, एम्प्टी स्पेस, एक पार्टिकल आप इसको पार्टिकल ही कह लें, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल जो कि सिर्फ स्पेस हो उसके अंदर और कुछ ना हो, या स्पेस हो और उसके अंदर थोड़ी सी रेडिएशन हो। तो इस तरह से ये कायनातें, एक आप अगर बबल बबल बाफ अपने जहन के अंदर लाएं और ये फोम को देखें तो वही फोम मौजूद है और इसमें से बबल्स के तौर पर कायनातें मुख्तलिफ निकल रही हैं, और एक कायनात नहीं निकल रही बल्कि बहुत सारी कायनातें निकल रही हैं। यहां से कॉन्सेप्ट पैदा होता है मल्टीवर्स का, ये एक किस्म की मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स की बहुत सारी और एग्जाम भी है, लेकिन एक किस्म जो है वो यहाँ से पैदा होती है, और ये बड़ी बहुत ही आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मल्टीवर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, उस स्पेस में से बबल्स निकल रहे हैं और वो बबल्स जो हैं वो उस मैटर एंटी मैटर पार्टिकल की तरह किसी और चीज से टकराते नहीं है, बल्कि वो बबल्स खुद ही खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि स्पेस से जो एनर्जी लेकर बबल्स निकल रहे होते हैं ना, उन बबल्स को वो एनर्जी, ये एक कंस्ट्रेंट है सिस्टम का कि बड़ी जल्दी वापस करनी होती है सिस्टम को, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को हल किया है फिजिसिस्ट ने, ये कह के कि हमारी जो यूनिवर्स है उसने जो एनर्जी वहां से बोरो की थी, तो इसके अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी भी मौजूद है। अब देखे ना, स्टीवन हॉकिंग ने वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसको भी बीच में वो ले आए हैं यहाँ पे। जो बबल बना हमारी कायनात के लिए उसके अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी भी मौजूद है, और ग्रेविटी जो है ना वो पॉजिटिव जो रेडिएशन की या मैटर की एनर्जी होती है जो थोड़ा सा पहले मौजूद था अंदर उस कायनात के अंदर, वो कहाँ से एनर्जी बोरो की थी? उस क्वांटम वैक्यूम में से या प्रिमिटिव स्पेस में से बोरो की थी। उसके अंदर एक छोटा सा स्पेक मौजूद था रेडिएशन का, या आप उसको जो भी कह लें, मैटर कह लें या फॉल्स वैक्यूम कह लें, बहुत उसके टेक्निकल नेम्स हैं। तो आप उसकी जो एनर्जी थी ना वो फिर उसने इस बबल ने वापस करनी थी, ठीक है ना, उसको स्पेस को। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी जैसा लॉ मौजूद था तो ग्रेविटी ने उस जो पॉजिटिव एनर्जी होती है मैटर की पॉजिटिव एनर्जी होती है, बड़ी तफसील से हमने देखा था, और ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी होती है। ये ऐसे ही है कि आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपए हो तो ग्रेविटी -10 रुपीज को डिपिक्ट करेगी, तो टोटल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो हमारी यूनिवर्स जो है इसकी टोटल एनर्जी, क्योंकि मैटर की एनर्जी तो मौजूद थी बीच में, छोटा सा जो मैटर का स्पेक था, लेकिन उसकी सारी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, ग्रेविटी जैसे लॉ की नेगेटिव एनर्जी ने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारी कायनात 0 एनर्जी कायनात है। अब आप समझ लें कि इसने जो जो कुछ बोरो किया था उसको वापस करने की जरूरत नहीं। ये चीज, एक चीज ये होगी इसलिए ये तबाह नहीं हुई, वरना तो ये छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज बहुत छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स के साइज की तबाह हो जाती है। दूसरी वजह यह कि तबाह नहीं हुई कि इसके अंदर जो मैटर पाया जाता था वो बड़ी खास किस्म का था। उसकी खासियत ये थी कि उसने इसको तेजी से एक्सपेंड किया, और ये ना होने से इलेक्ट्रॉन के साइज से भी छोटी, वहां से एक गोल्फ के साइज की बन गई, और गोल्फ के साइज से आगे भी एक्सपेंड करती चलेगी, हत्ता कि आज तक एक्सपेंड कर रही। तो ये 2 वजूहात है कि ये कायनात हमारी टूटी क्यों नहीं। और क्योंकि ये इनफिनिट नंबर ऑफ कायनात, ऑफ यूनिवर्सेस, ये यहां से निकल रहे हैं इस प्राइमोडियल स्पेस में से, इस वजह से हम ये सारी कायनातों में नहीं कह सकते किसी तरह हुआ होगा। कुछ कायनातों में रेडिएशन होगी, कुछ कायनातों में मैटर होगा, कुछ कायनातें बिल्कुल खाली होंगी, कुछ जल्दी टूट जाएंगी, कुछ हो सकता है कि बहुत ही लंबे अरसे तक जिंदा रहे, जैसे हमारी कायनात कुछ 15 बिलियन ईयर्स से अभी तक वजूद में है, ठीक है। तो अब आप देखें कि अभी मैं आपको कनेक्ट करता हूँ उसके दूसरे पिक्चर के साथ, जरा थोड़ा सा ये रिकैप कर लें। आज कुछ नए नए कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो रिकैप ऐसे करें कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बबल वजूद में आया था कायनात का प्रिमिटिव स्पेस से, उसके अंदर एक छोटा सा मैटर पेक्यूलर किस्म का मौजूद था जिसको रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर बोलते हैं। और ये मैटर हो या नॉर्मल मैटर हो, दोनों की ग्रेविटी नेगेटिव होती है। तो इसने वो जो 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 मैटर की एनर्जी है इसके अंदर, ये मैटर क्योंकि ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा और ग्रेविटी की एनर्जी नेगेटिव होती है, तो अब टोटल इस कायनात की एनर्जी 0 हो गई, या क्लोज टू, वेरी क्लोज टू 0 हो गई। अब ये जो रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर मौजूद था, और ये मैटर ऐसे ही हाइपोथेसाइज नहीं कर दिया, बल्कि आइंस्टाइन की जो स्पेशल, माफ कीजिएगा, जो ये है, जो ग्रेविटी की थियरी है उसकी, अभी मैंने जिक्र किया उसका, जो जनरल रिलेटिविटी है, वो हमें बताती है कि ये जो मैटर है ना, इसकी कुछ हालतें एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसी पाई जा सकती हैं कि ये ग्रेविटी जैसे एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, इसके मुकाबले में रिपल्सिव ग्रेविटी को प्रोड्यूस करे। अब ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी को रिपल्सिव और पॉजिटिव के साथ मिक्स नहीं करना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम पीछे छोड़ रहे हैं, एनर्जी टोटल 0 है इसकी, कायनात की, ठीक है, ग्रेविटी ही की वजह से। लेकिन आइंस्टाइन ने जो हमें उसकी इक्वेशन से बात पता चलती है वो ये है कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, जैसे कि अभी गैलेक्सीज को और बाकी चीजों को वो इकट्ठा कर देती है हमारी कायनात में, ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम सारे बाउंड हुए हैं। तो उन्होंने उनकी इक्वेशन ये बताती है कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ग्रेविटी को बजाय अट्रैक्टिव फोर्स के रिपल्सिव फोर्स की सूरत में बिहेव करना चाहिए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां पर जो स्पेशल मैटर मौजूद था उसकी ये प्रॉपर्टी थी, वो क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, छोटी सी ना होने के बराबर स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा मैस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर ग्रेविटी जो है बजाय अट्रैक्टिव फोर्स के रिपल्सिव फोर्स के तौर पर बिहेव करेगी, तो एक इन्फिजार और धमाका होगा बहुत बड़ा। इस धमाके को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन के अंदर यह हुआ कि जो मैटर था छोटा सा वो मौजूद था, उसने एक धमाका किया बहुत बड़ा, और उस धमाके के नतीजे में एक और उसका पिक्यूलर फीचर था जो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, कि उसने अपने आप को सेल्फ रेप्लीकेट किया, अपने आप में इजाफा किया, बेतहाशा इतना इजाफा किया कि पूरी कायनात के लिए जितना मैटर चाहिए था वो पैदा हो गया उस पर। तो लेकिन ये अब वो मैंने आपको जैसे बताया कि स्पेशल एक मैटर की हालत थी, इसको रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर कहते हैं। तो उस वो सारा का सारा प्रोड्यूस हो गया शुरू में थोड़े से मैटर से, शुरू में इतना मैटर था जितना एक चांद को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है कि छोटी सी स्पेस में था, तो वो भी एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी, कितना ज्यादा मैटर छोटी सी स्पेस के अंदर। तो उस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ग्रेविटी को रिपल्सिवली बिहेव करना चाहिए, रिपल्सिवली बिहेव किया तो ये इसमें इन्फिजार हुआ, धमाका हुआ, ना सिर्फ स्पेस बढ़ी बल्कि जो मैटर था उसने भी अपने आप को सेल्फ रेप्लीकेट किया, और सेल्फ रेप्लीकेट जब किया तो उसके लिए एनर्जी कहां से आई? वो ये बयान करते हैं कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले भी एनर्जी की जरूरत को ग्रेविटी ने नलीफाई किया था, यहां पर भी एनर्जी की जरूरत को ग्रेविटी नलीफाई कर देती है, क्योंकि मैटर जो है वो जहां पर होगा जिस मर्जी हालत में होगा ग्रेविटी को प्रोड्यूस करेगा, और ग्रेविटी हमेशा हमेशा एनर्जी में नेगेटिवली वो उसमें एनर्जी सम में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करती है। तो जितनी एनर्जी जितना ये जो जो मैटर जो है उसमें इजाफा होता गया, तो ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ पैदा होना शुरू हो गया। आपको पता है ना कि आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर ग्रेविटी क्या है, वो मैटर के मौजूद होने से वो स्पेस टाइम का कर्वेचर है उसको वो तोड़ मरोड़ देती है। तो ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है कहां से? मैटर से प्रोड्यूस होती है। तो मैटर जहां पर था उसने अपने आप में इजाफा भी किया, तो उतनी ही ग्रेविटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, और फिर इसके लिए हमें किसी एनर्जी की जरूरत भी नहीं थी। ये ऐसे ही है कि आप अपने बैंक अकाउंट में 10 की जगह 20 रुपए डाल दें, और साथ ही जो ही 20 रुपए डाले -20 ऑटोमेटिकली अंदर आ जाए, टोटल सम 0 रहे। तो इस तरह से मैटर पार्टिकल्स खुद ब खुद वजूद में आ गए। कैसे? वो जो छोटा सा मैटर का पार्टिकल था उसने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, और तमाम यानी वो उतनी एनर्जी वजूद में आ गई या रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर वजूद में आ गया जो कि हमें कायनात में मेगा स्ट्रक्चर्स और सारी चीजें बनाने के लिए चाहिए। अब वो सारा का सारा क्योंकि अनस्टेबल था, वो डिके हुआ, वो डिके हुआ तो नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स वजूद में आना शुरू हो गए, और ये सारा कुछ जो हुआ ये कायनात के आगाज में एक फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये सारी कार्रवाई जितनी आपको सुनाई ये सब हो गई। उसके बाद से आज तक कायनात जो है ना वो बस एक्सपेंड करती चली जा रही हो, इवॉल्व करती चली जा रही। तो ये हमने पिक्चर डिस्कस की थी, ये थोड़ा सा आपको रिकैप देना था। यहीं से आगे अब मैं आपको जोड़ता हूँ उस कॉन्सेप्ट के साथ जो आज आपके सामने प्रेजेंट करना है, द नो बाउंड्री कंडीशन। स्टीवन हॉकिंग इसको अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में, ये किताब आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा ऑनलाइन, इसमें इसको ये बयान करते हैं नो बाउंड्री कंडीशन को, और यहां से फिर वो इसको आगे जोड़ते हैं कि कायनात में हमें इसके वजूद में आने के लिए किसी खुदा की जरूरत नहीं थी। तो अभी जो दो तीन चार पैसेजेस मैंने छोटे छोटे इस किताब से सिलेक्ट किए हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनको हम देख लेते हैं। देखें, स्टीवन हॉकिंग कहते हैं कि वो जो यूनिवर्स है ना जो सिर्फ एक छोटी सी स्पेस से आप फूटेगी एक बबल की तरह, ये आप उसकी बात करेंगे कि उसकी हकीकत क्या थी जब वो उस प्राइमोर्डियल सूप में से या उस बाथ टब में से, तो सो टू स्पीक, निकली, तो वो यूनिवर्स कैसी थी, क्या क्या उसकी हालत थी, अब उस पर ये बहस करेंगे। तो कहते हैं इन द अर्ली यूनिवर्स जबकि वो,
जुनेद, मैं थोड़ा
जी जी
इंटरप्ट
प्लीज,
करूंगा। एक सवाल असल में जो आपने पिछले डिस्कशन की है वो, जो कि पहले भी हम सुन चुके थे, वो सवाल उस वक्त से मौजूद था और वो हर दफा जहन से निकल रहा है, तो मैं चाह रहा था कि इस मौके पे कर लूं मैं, सॉरी
जी
इसलिए मैंने
प्लीज,
आपको इंटरप्ट किया। यानी जो बात मैं समझा हूं कि जो कुछ उन्होंने बताया क्वांटम स्पेस बिल्कुल अर्ली यानी मामला हुआ था, वो इस वक्त तो नहीं हो सकता ना, यानी इस वक्त तो दोबारा इस कायनात से मतलब कायनात नहीं फूट सकती जो मैं
हाँ
समझा
नहीं,
हूं,
इस बहुत बहुत
यानी ये
सही
तो नहीं।
आपने ये इसको स्टीवन हॉकिंग ने डिस्कस किया अपनी इसी किताब के आखिर में, और कहा है कि ये इस वक्त अभी नहीं हो सकता क्योंकि लोकली जो है ना वो स्पेस स्टेबल है, पूरी की पूरी कायनातें इस तरह एक प्राइमोडियल उससे निकल सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे इर्द गिर्द कायनातें निकलना शुरू हो जाए इसी
अच्छा,
तरीके
यहीं से
से।
मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने इस मौजूदा कायनात के क्वांटम फिजिक्स के जो क्वांटम मैकेनिक्स के कवानीन लिए जनरल, और जो स्पेशल आइंस्टाइन की थ्योरी है उसको लिया मौजूदा कायनात से। अच्छा, उन सारे कवानीन को लेके अब वो अप्लाई उस इनिशियल शक्ल के बारे में कर रहे हैं जो इस वक्त तो कहीं पे भी कायनात में मौजूद नहीं है। तो इस
हाँ
चीज की
अब
क्या गारंटी है कि ये सारे कवानीन जो इस वक्त रूबा अमल है वो उस वक्त इसी तरह रूबा अमल थे? ये है असल में बुनियादी सवाल। या तो ये
बहुत
होता ना कि
बहुत
इस वक्त भी
अच्छी,
कोई जगह है।
बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही अच्छी ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसको जो स्टीवन हॉकिंग है वो ऐसे बयान करते हैं कि ये जो आपको मैंने दिखाया ना यहाँ पर, ये जो मैंने आपको इस बात आपको छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल इसको देखते हैं, ये जो कायनातें निकल रही हैं इनके लॉस और ये जो पीछे मौजूद है चीज जिस मशीनरी में से ये निकल रही है, जो प्राइमोर्डियल सूप है या वो बाथ टब की जो झाग सी है ये वाली, उनके लॉस में फर्क है। फंडामेंटल लॉस जो है ना वो होंगे इस झाग के, इस बैकग्राउंड स्पेस के जहां से वो निकल रही है, उन लॉस को हम नहीं समझते। लेकिन ये जो कायनातें निकल रही हैं ना उनमें से एक कायनात हमारी भी है और उसके लॉज ऑफ फिजिक्स इस तरह के हैं, उसके लॉज अब इस तरह के, उनके लॉज के ऊपर अब वो सारा अपना वो पेश करते हैं
नहीं,
अपनी
मैं तो
थ्योरी की।
इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ ना, जिस वक्त वो बिल्कुल क्वांटम स्पेस की सतह पे था, तो इसकी क्या गारंटी है कि उसके अंदर मौजूदा जो इस वक्त जितनी भी कवानीन है वो वहां पे अप्लाई हो रहे होंगे? इसको मैं मजीद एक सवाल से एलिबोरेट करता हूँ, एक
सही है
ऑब्जर्वेशन
आपकी।
से, कि जिस तरह एवोल्यूशन में एक बात बयान कर दी जाती है कि भाई बंदरों से या कॉमन एंसेस्टर से इंसान वजूद में आया है, कुरान मजीद ने सूरह सजदा में जाके उसकी करेक्शन की या जो भी सही बात थी उसको बयान कर दिया, तो साइंसदान तो अपने मफरूजे में खड़े हुए, जो कुछ उन्होंने नजर आया इंसान पे उन्होंने उसी को अप्लाई कर दिया। तो मेरा पॉइंट मेरा यह है कि इतने वसूख के साथ, कतई इल्म के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं वही हुआ था जो हम
नहीं
कह रहे
कह
हैं?
सकते। बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये आपकी। यानी जब हम ये मान रहे हैं कि हमारी कायनात के लॉज डिफरेंट है और हमने अपनी कायनात के क्वांटम लॉज पर कयास करके पीछे जाना है, तो पीछे जाने वाले लॉज तो इस कायनात के नहीं है। यही आप बात कर रहे हैं, पीछे जो है वो तो प्राइमोर्डियल स्पेस के लॉज हैं जिसमें से हमारी
बिल्कुल
स्पेस एक निकली है और इस स्पेस के अंदर के लॉज को आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये, सही है मसला। ये मसला पैदा हो जाता है, ये इस तरह से मेरे जहन में पहले मौजूद नहीं था। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बहुत शुक्रिया। मैं इसको इनकॉर्पोरेट बल्कि अपनी उसमें जो किताब को एडिट कर रहा हूँ तो उसमें इसको भी मसले को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, इस पर इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। तो ये अजम्पशन का एक मसला आ गया हमारे सामने। तो अब हम वापस आते हैं उस पर ही कि अब जो कायनात है ना प्राइमोर्डियल सूप को हम छोड़ के कायनात जो बबल की सूरत में निकल रही है उस पर हम आ रहे हैं। उसको स्टीवन हॉकिंग ऐसे बयान करते हैं कि इन द अर्ली यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स वाज स्मॉल इनफ टू बी गवर्न बाय बोथ जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी, देयर वर इफेक्टिवली फोर डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड नन ऑफ टाइम, सिंस टाइम बिहेव लाइक अनदर डायमेंशन ऑफ स्पेस। देखिए आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसी में से ये कॉन्सेप्ट, स्पेशल रिलेटिविटी पहले आई उसके बाद फिर उसको जनरलाइज किया हुआ आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी थी उससे ही ये बात हमारे सामने आना शुरू हो जाती है कि स्पेस और टाइम ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है बल्कि ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ये बात आइंस्टाइन ने, ये थोड़ी सी मिथ है कि आइंस्टाइन ने इसको इस नतीजे तक पहुंचाया था, ये एक और साइंटिस्ट थे उन्होंने उसी 1903 में गालिबन ये आइडिया पहले प्रेजेंट किया था। आइंस्टाइन ने इसको जरा इस पर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन एनीवे जहां से भी ये आया तो इस किसकी डिटेल में अभी जाने का हमारे पास बात नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, वो पूरी एक दास्तान है कि स्पेस और टाइम कैसे इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, लेकिन स्पेस और टाइम जो है वो इंटरचेंजेबल है। तो स्टीवन हॉकिंग अब ये करते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं कि यूनिवर्स जब बहुत छोटी सी थी तो पहला उन्होंने उसके ऊपर क्वांटम फिजिक्स का वो अप्लाई किया कि उसमें मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स की तरह वो फूट रहे हैं। दूसरा उन्होंने उस पर कुछ चीजें तो मैंने पहले बयान कर दी, एक बड़ी चीज वो उठाई यहां से जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, और उस थ्योरी के तहत उन्होंने ये किया कि अब वो जो छोटी सी स्पेस है ना, उस स्पेस को और टाइम को आपस में कनेक्ट कर दिया, और ये बताया कि अर्ली यूनिवर्स जो है ना उसमें टाइम मौजूद नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसमें जब स्पेस इतनी ज्यादा आपस में वार्पिंग थी, यानी स्पेस इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी, उस छोटे से स्पेक के अंदर ये इतना एक्टिविटी सारे सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त टाइम जो है उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टाइम स्पेस थोड़ी सी बड़ी होगी तो टाइम का कॉन्सेप्ट पैदा होगा उसके अंदर। ये चीज समझना इतनी को मुश्किल बात नहीं है। देखिए ना, ग्लास के अंदर जितनी कोई एक्टिविटी हो रही है, मैं इसके अंदर किसी वो टॉय को डाल दूं छोटे से उसको ब्लॉक को, तो वो अंदर तैरना शुरू करेगा, तो तैरने से कि एक चीज पहले यहाँ थी फिर यहाँ गई, स्पेस के साथ जब स्पेस बड़ी एक वजूद में आएगी तो टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही मिला हुआ है स्पेस के साथ। मैं कहता हूं कि मैं आपको अभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं और अगले लम्हे ये बात करूंगा, तो मैं एक स्पेस के अंदर बैठे हुए तो स्पेस के अंदर टाइम को महसूस कर रहा हूं, या टाइम के सारे जितनी मेरी मेरे टाइम का कॉन्सेप्ट है वो स्पेस के अंदर अंदर जुड़ा हुआ उसके साथ मौजूद है। तो यानी इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज ने मूवमेंट करनी है, किसी चीज ने भी मूव करना है, तो क्या होगा, गाड़ी अभी इधर है, इसने इधर पहुंचना है, उसको टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचते हुए, यानी स्पेस के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है ना, वहां से टाइम का कॉन्सेप्ट निकलता है। ये ज्यादा आसान बात है समझने। तो स्पेस को अब जब इतना छोटा कर दें कि ऑलमोस्ट जीरो स्पेस हो, तो स्पेस नहीं मौजूद होगी तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी सी इसकी तफसील करता हूँ। तो ये टाइम और स्पेस आपस में यूं मिंगल करती हैं या इंटरचेंजेबल हैं, ये मैंने बता दिया कि रिलेटिविटी से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहते हैं, वॉन्स वी एड द इफेक्ट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन एक्सट्रीम केसेस वॉर्पेज ऑफ द स्पेस टाइम फैब्रिक कैन अकर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट टाइम बिहेव्स लाइक अनदर डिमेंशन ऑफ स्पेस। ये भी उन्होंने दोनों थ्योरीज को सामने रखते हुए, मैंने इसके एक मोटी सी आपको बता दी है कि वजूहात क्या है, दोनों थ्योरीज में से वही चीज निकाली है कि एक्सट्रीम केसेस के अंदर, वो एक्सट्रीम केस क्यों था, क्योंकि छोटे से एक्सपेक्ट के अंदर इतनी ज्यादा वो एक्टिविटी और एनर्जी और सारा कुछ मौजूद था, तो हुआ ये कि वहां पर टाइम को स्पेस ही की तरह बिहेव करना चाहिए, वहां पर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं होना चाहिए। तो इससे जो बात समझ में आती है हमें, वो ये कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था अर्ली यूनिवर्स। ये देखें, मैं आपको थोड़ी सी दो जो पिक्चर्स हैं उनमें फर्क बता दूं। जो कायनात की नॉर्मल हमारी जो फिजिक्स की एक पिक्चर बनती है बिग बैंग की 1960-70 से पहले, उसमें ये बात बयान हुई कि ये देखें नीचे वाला, अगर मेरा पॉइंटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये देखें नीचे, ऐसी पिक्चर थी कि एक सिंगुलैरिटी थी, बिग बैंग सिंगुलैरिटी उसको बोलते हैं, और उस सिंगुलैरिटी से, यानी आप समझ लें कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी वो है कि जहां पर लॉज ऑफ फिजिक्स वगैरह सारे ब्रेक डाउन कर जाते हैं और टाइम अभी यहां से इसके साथ ही वजूद में आ जाएगा। एक सिंगुलैरिटी है, जैसे सिंगुलैरिटी का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, मिलती जुलती चीज है, लेकिन वो सिंगुलैरिटी के साथ ही वक्त वजूद में आ जाएगा। स्टीवन हॉकिंग ने ये कहा है, वो देखे ना बिग बैंग और इन्फ्लेशन जो सारी मैं बात कर चुका हूं कि वो इंफिजार होगा, वो सारा वो इंफिजार बिग बैंग का उसी तरीके से हुआ जैसे मैं बयान कर चुका हूं, वो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। तो ये बिग बैंग के अंदर इस तरह माना जाता था इसको कि एक सिंगुलैरिटी है। देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ, द यूनिवर्स मे हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम अ मिस्टीरियस इनिशियल पॉइंट नोन एज अ सिंगुलैरिटी। इस पिक्चर को तब्दील किया हार्टल ने और स्टीवन हॉकिंग ने, उन्होंने प्रपोज किया कि 1983 में द कॉस्मोस मे हैव हैड नो टेम्पोरल बिगिनिंग एट ऑल, but rather a rounded off gap of pure space. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بگ بینگ کے ساتھ ہی وقت کا آغاز ہو گیا, بڑی جو ہے نا اسی سنگل پوائنٹ کے ساتھ ہی. یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنگولیرٹی ہے بگ بینگ کی, یہ ایسے سنگولیرٹی موجود ٹائم کے اندر موجود نہیں تھی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا اس طریقے سے ایک راؤنڈ اس کی سپیس بن جاتی ہے. یہاں پر جب کائنات بہت ہی چھوٹی ہے اور ایکسٹریم سپیس اور ٹائم کا واپج ہوا ہوا ہے, آپ اس میں مل گئے ہیں تو ٹائم ہے ہی نہیں. یا آپ اس کو اس پکچر میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس جگہ کے اوپر ٹائم ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو انیشل پوائنٹ اس کو آپ بولیں گے نا, کہ انیشل پوائنٹ یہ پوائنٹ اے ہے, یہاں سے کائنات شروع ہو رہی ہے, یہاں سے ٹائم شروع ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں ٹائم شروع نہیں ہو رہا, یہاں پر وہ جو آپ ایک ببل کی صورت میں اس کو سوچیں, اور بہت چھوٹا سا ببل ایک ہو, تو وہ ببل جو ہے اس کا کوئی ایج نہیں ہے, وہ سپیس ہے, پیور سپیس ہے, اور پیور سپیس کے اندر وقت نہیں ہے. اب جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی پیور سپیس, تو اتنا اس کا سائز ہوگا کہ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ چیزیں اس طرح سے سیکوینشلی موو کر سکیں کہ ایک پوائنٹ سے کار شروع ہو یا ریل گاڑی شروع ہو اور دوسرے پوائنٹ تک وہ پہنچے, تب ٹائم کا کانسیپٹ اس میں نکلنا شروع ہوگا. اس سے پہلے پہلے سپیس اور ٹائم دونوں جڑے ہوئے تھے آپس میں, اور ٹائم سپیس ہی کی ڈائمینشن کی طرح بیہیو کر رہا تھا. یہاں سے یہ دیکھیں پوائنٹس, یہاں پر سپیس اور ٹائم ملے ہوئے ہیں, تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر سپیس ہے, فور ڈائمینشنل سپیس ہے. اس سے آگے جب ایولوشن ہو رہا ہے کائنات کا بالکل سٹارٹ ہی میں, تو وہاں سے یہ ایک ڈائمینشن سپیس کی وقت بن جاتی ہے. تو تین ڈائمینشن سپیس کی, ہائٹ ویڈتھ اور لینتھ, اور ایک ٹائم کی ڈائمینشن ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ایرو آف ٹائم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ایرو آف ٹائم دیکھیں اس پکچر میں, ایرو آف ٹائم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ٹائم تھا ہی نہیں. تو اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا, ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اب آپ پوچھیں کہ اس سے پہلے یہاں پر کیا کیا ہوا تھا, اپنے وقت کے لحاظ سے آپ پوچھیں, تو یہ میننگ لیس کوشچن ہوگا. اس سے پہلے وقت ہی نہیں ہے, اس سے پہلے جو بھی چیز تھی اس کے ساتھ کوئی ٹائم کا کانسیپٹ نہیں تھا. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کائنات کے پھیلاؤ سے پہلے کیا تھا, کیونکہ پہلے وقت ہی نہیں تھا. وقت ہوگا تو پہلے کا, پریزنٹ کا اور فیوچر کا کانسیپٹ ہوگا نا. تو یہاں پر کوئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا کانسیپٹ نہیں ہے, اٹ واز جسٹ بی. یہ اسٹیون ہاکنگ نے اپنی جو بریف ہسٹری آف ٹائم اس میں اس کو بیان کیا ہے. تو دا یونیورس وڈ جسٹ بی, اس طرح سے اس کو بیان کیا کہ یہاں پر بس وہ ہوگی. اس وقت ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ اتنے کلیئر نہیں تھے, بعد میں انہوں نے اس کو کلیئر کر کے, تو اپنی 2010 میں جو کتاب آئی ہے یہ, اس میں اس کو زیادہ کھول کر پریزنٹ کیا. وہاں پر وہ اس خدا کے وجود کے بارے میں بھی ملی جولی پکچر دے رہے تھے. تو ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, کہنے کی جو سادہ ترین بات ہے, سب آپ ان کو پیکیولیرٹیز کو چھوڑ کر اور بیچ میں وہ ڈیٹیلز کو چھوڑ کر, وہ بات یہ کہ کائنات کے شروع میں سادہ, جب وہ ببل کی طور پر وجود میں آئی تو سادہ سپیس تھی, اس کے اندر ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, ٹائم موجود ہی نہیں تھا. سو دیٹ دا کوسچن آف واٹ ہیپن بفور دا بگننگ آف دا یونیورس از رینڈرڈ میننگ لیس. تو یہ ایک سوال بالکل میننگ لیس ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا. پہلے کا سوال ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ٹائم ختم ہو گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں, یہ نو باؤنڈری کنڈیشن کو آپ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نو باؤنڈری کنڈیشن, یہ اس کو نو باؤنڈری کنڈیشن کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سنگولیرٹی نہیں تھی, کوئی ایج نہیں تھا, کوئی باؤنڈری نہیں تھی, بلکہ کوئی یہ باؤنڈری آپ سمجھ لیں کہ باؤنڈری لیس ایک کرو سی اسپیس تھی. باؤنڈری لیس یعنی کوئی ایج نہیں تھا, کہ ایک جیسے کلف کا ایج ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی آپ جھانک کر دیکھ سکتے ہو سارا. تو یہ ایک راؤنڈ کر دیا, ایک راؤنڈ سپیس تھی, بس سپیس ہی ہے راؤنڈ قسم کی, اس کا کوئی ایج نہیں ہے. نو باؤنڈری کنڈیشن کیا کہتی ہے, ریموو دی ایج اولڈ آبجیکشن ٹو دی یونیورس ہیونگ اے بگننگ. کہ کائنات کی آغاز کوئی نہیں تھی, کائنات کی آغاز اس لیے نہیں تھا کہ کائنات ہماری ببل کی صورت میں وجود میں جب آ گئی, اس کے ببل کی صورت میں وجود میں آ جانے کے بعد بھی اس میں ٹائم اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا جس طرح کہ ابھی ہمارے سامنے ٹائم ایگزسٹ کرتا. بس اتنی بات وہ بیان کر رہے ہیں. اٹ آلسو مینس دیٹ دی بگننگ آف دی یونیورس واز گورن بائی دی لاز آف سائنس اینڈ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی سیٹ ان موشن بائی سم گاڈ. یہ انہوں نے زیادہ ایکسپلیسٹ کیا بعد میں اس کو اپنی کتابوں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ٹائم ہی نہیں تھا تو کسی خدا نے कुछ भी कोई काम करना है उसके अंदर, तो खुदा को काम कर रहे हैं। उन्होंने पुराना, बहुत ही पुराना बिब्लिकल व्यू उठाया और इस पर अप्लाई किया कि खुदा तो टाइम में जो है ना, वो उसकी भी एक्टिविटी होगी। तो जब टाइम को ही उड़ा दिया हमने, तो क्रिएशन का खुदा क्रिएट कर रहा है कायनात को, तो इस क्रिएशन का क्या सवाल है? क्रिएशन तो होगी, जैसे मैं कोई चीज बनाऊंगा तो टाइम में बनाऊंगा, तो खुदा को भी उसी पर उन्होंने कयास किया और कहा है कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ से खत्म हो जाता है। तो ये नो बाउंड्री कंडीशन है। फिर मैं एक लफ्ज में कह दूं कि कायनात के आगाज में सिर्फ प्योर स्पेस थी, यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट उन्होंने खत्म कर दिया। इसको अगर आपने देख लिया, और इसमें मतलब ये बहुत ही, ये आसान नहीं है इन कॉन्सेप्ट को समझना, मैं समझता हूँ, तो आप इस बात को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। आपको शायद ये बार बार कुछ वीडियोस देखनी पड़े और पढ़े, और वो मेरा अपना टेक्स्ट भी और बाकी कुछ चीजें भी, हो सकते हैं आपको अपने वक्त में बाद में मतलब हो क्या सकता है, मेरे ख्याल लाजमी देखनी पड़ेगी, तो फिर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा आपको गो डाउन योर स्पाइन देन। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, वो आप में से जो जहीन हजरात हैं, माशाल्लाह सारे जहीन है, लेकिन हर किसी का जहन एक तरह से काम नहीं करता, और सारी चीजों को जाहिर है कि वो इस तरह इमेजिनेटिव नहीं होता, तो बाज लोगों के जहन में अभी ये प्रॉब्लम पैदा हो चुकी होगी कि जो प्राइमोर्डियल स्पेस थी, उसके बाद कायनात एक बबल के तौर पर वजूद में, उसमें भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, लेकिन वो जो प्राइमोर्डियल स्पेस है उसके अंदर वो सारी जो टब के अंदर जो जो फॉर्म होता है, वो सारा कुछ, वो फॉर्म मौजूद है, और उसके अंदर तब्दीलियां तो हो रही हैं, डायनेमिक्स तो हो रहे हैं, मूवमेंट तो हो रही है। तो स्टीवन हॉकिंग ने कैसे कह दिया कि वहां पर वक्त मौजूद नहीं था? मूवमेंट तो वक्त में होगी। तो ये एक मसला पैदा हो जाता है अपेरेंटली, लेकिन इस मसले को हल किया स्टीवन हॉकिंग ने, वो ऐसे हल किया कि कायनात के बबल के तौर पर वजूद में आने से पहले जो कुछ हो रहा था वो रियल टाइम में नहीं हो रहा था, बल्कि इमेजिनरी टाइम में हो रहा था। इसकी भी तफसीलात बहुत करनी पड़ेंगी, वो मैंने अपनी किताब में उसको शामिल कर लिया। स्टीवन हॉकिंग का जो हमारे लिए जरूरी है पैसेज, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो ये कहते हैं, इट सीम्स दैट क्वांटम थियरी कैन प्रिडिक्ट हाउ द यूनिवर्स विल बिगिन। क्वांटम थियरी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू आइडिया दैट ऑफ इमेजिनरी टाइम। इमेजिनरी टाइम में साउंड लाइक साइंस फिक्शन, के क्वांटम थ्योरी जो है वो टाइम का एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर आती है, वो है रियल टाइम के मुकाबले में इमेजिनरी टाइम का। रियल टाइम वो है जो हमारे लिए वक्त एक सक्सेशन में गुजर है, पास प्रेजेंट फ्यूचर, वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं इमेजिनरी टाइम का वो कॉन्सेप्ट है जो उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस में से फूटता है, उसकी बड़ी तफसील है लंबी चौड़ी, वो कैसे फूटा ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाल कर रियल में कैसे गया, इसकी पूरी इवोल्यूशन है स्टीवन हॉकिंग के हाँ जो हुई है इसकी। लेकिन बारा बट नेवरदलेस इट इज ए जेन्युइन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। जेन्युइन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर उसको इस्तेमाल हो रहा है, उसमें उसके मीनिंग ये अक्स कर रहे हैं, उसमें से मैं भी अर्ज करता हूँ क्या। वन कैन पिक्चर इट इन द फॉलोइंग वे। वन कैन थिंक ऑफ ऑर्डिनरी रियल टाइम एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन द लेफ्ट वन हैज द पास्ट एंड ऑन द राइट द फ्यूचर, बट देर इज अनदर काइंड ऑफ टाइम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी टाइम बिकॉज इट इज नॉट द काइंड ऑफ टाइम वी नॉर्मली एक्सपीरियंस, बट इन अ सेंस इट इज जस्ट एज रियल एज वॉट वी कॉल रियल टाइम। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, डिपिक्शन दिखा देता हूँ कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वक्त ना, आप ऐसे समझो, ये भी एक, ये एनालॉजीज होती हैं मुख्तलिफ, ऐसे समझो कि हमारा वक्त ये गुजर रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, यानी आप पैदा हुए उसके बाद इस वक्त आप इतनी उम्र के हैं, आगे आपने दुनिया से इस उम्र में रुखसत होना है, तो वक्त ऐसे गुजर रहा है। वो कहते हैं ये रियल टाइम है जो, जिसको हम रियल कहते हैं अपने लिहाज से, लेकिन एक इमेजिनरी टाइम का कॉन्सेप्ट भी हमें क्वांटम फिजिक्स देती है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि वर्टिकल टाइम का, कि यहां पर आपकी ये जो 0 है ना, 0 सेकेंड, इस पर सुई रुकी हुई है आपकी, जितनी जो मूवमेंट वगैरह हो रही है वो ए टेम्पोरल रियल में हो रही है। यहां पर 0 है, टाइम रुका हुआ है, जो चेंजेस वगैरह हो रही है वो वर्टिकल टाइम में हो रही है, यानी आपका वक्त आपके लिहाज से, इसको ऐसे सोचें, ये एनालॉजी है, हम जाहिर है कि वो पिक्चर अपने जहन में ला ही नहीं सकते वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहने की ये कोशिश कर रहे हैं जितना करीब अपने आप को ला सकते हैं कि आपकी सुई रुकी हुई है, रुकी हुई सुई, कोई सेकेंड टाइम नहीं गुजर रहा उसके अंदर, लेकिन वो जो कायनात का जो सूप था शुरू में प्राइमोर्डियल, उसके अंदर से कायनातें फूट रही हैं टाइम के बगैर, टाइम के बगैर उसकी मूवमेंट हो रही है, और जो टाइम के बगैर हो रही है उसको हम इमेजिनरी टाइम बोल देते हैं, वो हॉरिजॉन्टल टाइम है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे सुई 0 पे रुकी हुई है, यहाँ पर एक ही आपका 1 सेकंड भी नहीं गुजरा, आपका 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं गुजरा, टाइम बिल्कुल 0 है आपके लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो तब्दीलियां उसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो अब ये पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। ये मैंने आपको इमेजिनरी टाइम यहां पर दिखा देता हूं, ये देखें, ये हमारी यूनिवर्स जो है, आप यहां से आगाज करेंगे ना यूनिवर्स का, ये पीछे इसको तो आप भूल जाएं, इसको नीचे वाले को भी भूल जाएं, ये और ये हमारे लिए मानिफेज है। 0 यहां कायनात का आगाज हो रहा है, अभी 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, अब ये बल्कि कायनात के आगाज में आ जाने के भी थोड़ी देर के बाद ये टाइम शुरू हो रहा है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। तो एनीवे हम कह सकते हैं कि कायनात के बिल्कुल आगाज के करीब ही टाइम, अब यहां से ये रियल टाइम शुरू हो रहा है। इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो यूनिवर्स के अंदर इमेजिनरी टाइम में हो रहा था। इमेजिनरी टाइम से मुराद ये है कि वो इस तरह से टाइम सिक्वेंशली नहीं गुजर रहा था, बल्कि गुजर ही नहीं रहा था, और वो सारी चीजें भी हो रही थी। ये भी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो खुदा की तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल इसमें ये जरूरी है अभी कि हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखें कि खुदा की क्रिएशन के बारे में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, बल्कि पढ़ दूं इसको, मैंने बता तो दिया ही है। द इंस्टेंटेनियस क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स आउट ऑफ अ क्वांटम वैक्यूम वाज अ टाइमलेस एट ऑफ टेम्पोरल इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी टाइम हाउ एवर इट टुक प्लेस इन ये। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे द इंस्टेंटेनियस क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स आउट ऑफ अ क्वांटम वैक्यूम वाज अ टाइमलेस ए टेम्पोरल इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी टाइम, के कायनात जो बबल की सूरत में वजूद में आ रही थी वो ऐसा एक इवेंट था जो ए टेम्पोरल इवेंट है। टेम्पोरल कहते हैं वक्त को, वक्त से रिलेटेड चीज है। ए टेम्पोरल का मतलब है जैसे थीस्ट ए थीस्ट, टेम्पोरल ए टेम्पोरल, तो कायनात का जो उस बबल में से निकल आना है वो वक्त मेन इस रियल वक्त में नहीं हो रहा था, बल्कि इमेजिनरी वक्त में हो रहा था। वक्त उस वक्त था ही नहीं, गुजर नहीं रहा था, लेकिन मूवमेंट हो रही थी, कुछ हो रहा था। तो वो जो कुछ हो रहा था इट टुक प्लेस इन व्हाट मे बी कॉल्ड वर्टिकल टाइम विद नो एरो ऑफ डायरेक्शन, उसमें ये वाले एरो ऑफ डायरेक्शन कहते हैं टाइम के एरो ऑफ डायरेक्शन, वो इसको बोलते हैं 1 2 3 4 गुजर। तो उस वक्त कोई पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं था, उसके अंदर मूवमेंट हो रही थी बगैर किसी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के। द बेबी यूनिवर्स वॉज सिमिलरली ए टेम्पोरल टू बिगिन विद, वो जैसे मैंने आपको बताया कि कायनात इवन जब वो बबल वजूद में भी आ गया तो शुरू में थोड़ी देर के लिए उसमें भी टाइम नहीं था। नेवर्थलेस ऑल दिस, लेकिन बाहर सूरत तमाम ये चीजें, द प्रिमिटिव वैक्यूम स्टेट, वो जो प्राइमोडियल वैक्यूम था, अभी का क्वांटम वैक्यूम नहीं, वो जो प्राइमोडियल स्पेस थी, वो उसमें से स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और यूनिवर्सेस, और इनिशियली जो यूनिवर्स के अंदर आप समझ लें कि वो जो हल्की सी वो एक्सपेंड कर रही थी धमाके से पहले, वो सारा उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा था, वॉज गवर्न बाय द क्वांटम थियरी एंड लॉज ऑफ साइंस। उस वक्त वक्त नहीं था, लेकिन जितनी चेंजेस हो रही थी, स्टीवन हॉकिंग बयान करते हैं लॉज के गवर्निंग कॉन्सेप्ट है ना उनके यहाँ, जिसको हमने डिसमिस किया था पहले भी, आज भी उसको थोड़ा सा देखेंगे, तो वो वहां पर बस लॉज ऑफ साइंस मौजूद थे, लॉज ऑफ फिजिक्स मौजूद थे वहां पर, उसके सिवा कोई चीज मौजूद नहीं थी, और वो वक्त में मौजूद नहीं थे, क्योंकि सारी मूवमेंट जो है ना उससे पहले वो वक्त में नहीं हो रही। तो ये आपके सामने नो बाउंड्री कंडीशन मैंने बयान कर दी। तो अब इस पर हम देखते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टन किया है, इसकी और डिटेल्स में जाया जा सकता था, लेकिन हम इस पर अभी कुछ क्रिटिकल सवाल उठाते हैं। लेकिन ये पहला जो क्रिटिकल सवाल उठता है वो ये कि ये सारा एक साथ नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वन क्लिक जी। पहली बात, ये बड़ी जरूरी बात है, और जब भी गावरी साहब के साथ में इस किस्म की चीजें डिस्कस करता हूं तो वो इसको उड़ा देते हैं कि लाजमे कि मेरे साथ ये बात ना करो, मैं इसको काबिले इतना ही नहीं समझता, क्योंकि ये इल्म की बात नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशंस है, ये मुतखैला या ख्याल जिसको आप कहते हैं उस किस्म की चीज है। ये सारी की सारी चीज, नो बाउंड्री कंडीशन और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ, ये साइंस कब बनेगा, जब मुशाहदे से या एक्सपेरिमेंटेशन से इसकी तस्दीक हो जाएगी, गो कि वो इनडायरेक्ट मुशाहदा, डायरेक्ट तो हम इन चीजों को मुशाहिदा नहीं कर सकते, ये तो बहुत छोटे लेवल पर और जाहिर है कि बहुत पीछे हुई थी, लेकिन जैसे कि बिग बैंग के बारे में हमें ऑब्जर्वेशन के अंदर ये जो जितने हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन मौजूद है बड़ी हल्की सी उधर से, और बहुत सारे और ऑब्जर्वेशनल डेटा है जहां से पता चल जाए कि कायनात एक पॉइंट से फूटी हुई है, इसी तरीके से इनके भी कुछ ना कुछ टेस्ट होने चाहिए। जब ये हम मुशाहिदात कर लेंगे तो उसके बाद फिर ही इल्म की दुनिया की चीज बनेगी और सारा कुछ होगा। लेकिन इससे इस तरह से बयान कर देने से इत्मीनान नहीं होता, और कम से कम इतनी एक चीज आ जाती है कि खुदा के अलावा भी कोई चलो पॉसिबिलिटी तो आ गई है हमारे सामने। तो इसलिए मैंने इस पर फिर कलाम करना जरूरी समझा, और फिर ये पॉपुलर बड़े आइडियाज हैं और लोगों के दिल में खौफ पैदा होता है या उनके ईमान में खलल आता है कि ये तो और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो असल में जो सारा मेरा काम करने का मकसद है वो ये कि ये पॉसिबिलिटीज भी अपने अंदर उतर कर देखें तो बूंदी हैं, और ये एज पॉसिबिलिटीज भी दे डोंट मेक सेंस। तो पहली बात तो ये है, ये जरूरी बात है कि ये सब चीजें जितनी मैंने आपके सामने बयान की है इनमें से हकीकत कोई भी नहीं है, ये अजम्पशन है, और सब साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं, गो के वो जितना भी इसको अपनी पॉपुलर किताबों के अंदर जितना मर्जी इसको हकीकत के तौर पर पेश करें, वो जो टेक्निकल सेंस है उसके अंदर सब के सब सब इस पर मुत्तफिक हैं कि ये कोई साइंस नहीं है। और यहाँ तक भी है कि ये हो सकता है बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो साइंटिस्ट हैं वो ये बयान करते हैं, बोथ थीस्ट और एथीस्ट के इन चीजों को टेस्ट करना अभी तक की जितनी साइंस है उसमें नामुमकिन मालूम होता है, गो के बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन आ जाए और हमारे पास को नए टूल्स आ जाए या बिल्कुल ही फिजिक्स के अंदर नई चीजें सामने आ जाए। एनीवे ये पहला पॉइंट है कि ये असम्पशन है। फिर हम अगले पे चलते हैं कि इवन इस असम्पशन को मैं दुरुस्त भी मान लूं जिस पर मुझे बहुत डांट पड़ती है उस्ताद से, तो क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरह की चीजों को काबिले इतना ही नहीं समझना चाहिए क्योंकि इल्म की दुनिया की चीजें नहीं, लेकिन बहरहाल अब फैशन में और सब कुछ है तो इस पर मेरा ख्याल है एक लिहाज से देखा जाए तो कलाम करना जरूरी हो जाता है। तो एनीवे ये इसको हम फेस वैल्यू पर भी लें और जितनी नो बाउंड्री कंडीशन के साथ टेक्निकल फिजिक्स के अंदर से प्रॉब्लम्स हैं उन सबको इग्नोर करें और हम मान लें कि नो बाउंड्री कंडीशन थोड़ी देर के लिए कि दुरुस्त है, तो क्या होगा? देखिए, हमने खुदा का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने पेश किया था उसमें वक्त की कोई बात नहीं की थी, ने ये कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश किया था, मैं इसको दोहरा देता हूँ फिर मैं इसको तर्जमा भी कर देता हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइम, कि टाइम चाहे हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, या रियल टाइम एग्जिस्ट करे या ना करे, द प्रिमिटिव स्पेस एनर्जी, ठीक है, जो शुरू में स्पेस और एनर्जी थी उसके अंदर, केम इक्विप्ड विद अ पोटेंशियल और सीड उसको या बीज कह लें टू क्रिएट एन एंटायर यूनिवर्स इंक्लूडिंग टाइम एंड लॉज ऑफ फिजिक्स, के वो जो प्राइमोडियल स्पेस थी जहां पर भी वक्त ही एग्जिस्ट नहीं करता था और ना बबल कोई कायनात वजूद में आई थी, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद थी पहले से पोटेंशियल के वो हमारी जैसी कायनात को वजूद बख्श दे, और इस कायनात के अंदर जो लॉस हो वो भी ऐसे हो, इसके अंदर टाइम का भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि करते 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 उससे हैरत अंगेज चीजें वजूद में आ जाए। इसकी मैं बिल्कुल तफसील में जाने का हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि इसको हमने बहुत तफसील से जब खुदा का वजूद देखा है तो उसमें हमने देखा है कि ये असल में वो सलाहियत वो कुव्वत मौजूद है उस चीज के अंदर, उस बीज के अंदर। वो बीज आप मुझे दे दें तो ये इस तरह की मैं 10-15 कायनातें आपको दे दूं, उसके अंदर कोई मसला नहीं, लेकिन वो बीज है असल, बीज दे दें तो दरख्त उग जाएंगे। हो सकता है कि कुछ बीज जो है वो दरख्त उनमें से ना उगे, जैसे बीजों का होता है कोई नक्स होता है, कोई कंडीशंस होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बीज उग जाएंगे हमारी कायनातों की तरह के। तो मसला ये है कि इस हैरत अंगेज पोटेंशियल उसके अंदर वो कहाँ से आ गया। तो अब वो जो पोटेंशियलिटी की हम बात करते हैं ना, वो पोटेंशियलिटी असल में मैंने आपको बहुत तफसील से बताया था कि वो इतनी वो हैरत अंगेज चीज है कि उस पोटेंशियलिटी में, और उस पोटेंशियल सिर्फ वो पोटेंशियलिटी नहीं, पोटेंशियलिटी फिर वो जहूर में आती है, यानी वो एक बीज जो है वो तो एक पड़ा हुआ एक बीज अपनी जगह पर आपको हैरत अंगेज नहीं लगेगा, जब वो बीज फल बूटे देना शुरू करेगा, पौधे निकलेंगे उसमें से और उस पर तरह तरह के फूल और फ्रूट्स और क्या कुछ उसके ऊपर वो फल देगा, उस वक्त वो एक एक हैरत अंगेज चीज बन जाती है। तो आपको वो सीड एक्सप्लेन करना पड़ता है, और वो सीड जिस जिस चीज को वजूद में बख्श रहा है वो आप देख लें कि बिल्कुल मैथमेटिकल रियलिटीज, मैथमेटिकल लॉस जिसको आप लॉस ऑफ फिजिक्स कहते हैं, उन वो हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल। तो कम अज कम जो इस सीट का बनाने वाला है वो कम अज कम एक मैथमेटिशियन का जहन तो रखता है, और कम अज कम हमारे लिहाज से अगर देखा जाए, चूंकि बाहर सूरत ये हमारी प्रोजेक्शन है खुदा को, तो हम जान नहीं सकते उसके उसके जात के बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते, इवन सिफात सिफाते जाती सिफात के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते ये। लेकिन हमें जो एक शाबा मिलता है वो ये कि कम अज कम एक माइंड तो होना चाहिए, जैसे एक माइंड हमारा होता है और वो फिर लॉज को और इन चीजों को को मतलब आप लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन पर बात करते हैं। तो कम अज कम खुदा का को एक मैथमेटिशियन या एक मैथमेटिशियन के साथ जाहिर है कि वो एक जहन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, तो एक जहन का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर खूबसूरती बदसूरती हम बहुत तफसील से उसको देख चुके। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ये था, हमारा आर्ग्यूमेंट टाइम से रिलेटेड नहीं था। मैं इसको मजीद वजाहत करता हूँ। सो आर आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वो टाइम पर नहीं डिपेंड करता, तो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि ये जो कायनात है या मुख्तलिफ कायनातें हैं, ये बनी हुई हमें दिखाई दे रही है, ये किसी की तखलीक, किसी की क्रिएचर मालूम होती है, ठीक है ना, ये मखलूक मालूम होती है। इनका तजिया आप करते चले जाएं, ये तमाम तर किसी की मखलूक मालूम होती है। हमने अपनी कायनात का बहुत डिटेल में तजिया करके देख लिया, मल्टीवर्स वगैरह का आप करें तो उसका भी ऐसे ही तजिया मिलता जुलता होगा कि जैसे रेहान भाई ने भी बताया अभी, कि एक तो उसके अपने लॉज होंगे, वो मैथमेटिकल लॉज हैं, उसके बाद फिर आगे भी कायनातों के अंदर लॉज होंगे, वो लॉज या वो जो कुवतें हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, तो चीजें तो यहां से हमें साफ मालूम होता है कि ये मखलूक है। आप ये लॉज अपने अंदर इसने इनबिल्ट नहीं कर दिए, इसके पास कोई जहन वगैरह नहीं, तो ये मखलूक है, और मखलूक हैं इनका तजिया करके नजर आता है तो खालिक का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ये हमारा आर्ग्यूमेंट था। तो देखें मैं आप खोलता चला जाऊंगा टाइम के साथ इसको। द रिमूवल ऑफ टाइम हैज नो इम्प्लीकेशन फॉर गॉड्स एक्ट ऑफ क्रिएशन, फॉर दैट इज नॉट अंडरस्टूड टू टेक प्लेस इन टाइम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि स्टीवन हॉकिंग ने उस टाइम को के कॉन्सेप्ट को वहां से उड़ा दिया, और फिर उन्होंने बयान किया कि अब तो खुदा के लिए वक्त ही नहीं बचा कि उसमें वो कोई को काम कर सके। स्टीवन हॉकिंग का यहाँ पर मसला ये है कि वो दुनियाई खुदाओं पर कयास कर रहे हैं अल्लाह ताला को, या जो इब्राहिमिक खुदा है उनको, जो इब्राहिमी खुदा है उनको इस तरह की दुनिया में कोई टाइम के अंदर बैठे हुए किसी खुदा पर कयास करें, जैसे कि कुछ शिर्क में मुब्तला लोग मानते हैं, या कुछ नाइव किस्म के दूसरे तीसरे दर्जे के हम जैसे ईमान वाले बाज़ूकात कह देते हैं ऐसी बातें। तो मैं आपको थोड़ा सी इस हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूँ कि स्टीवन हॉकिंग से बहुत पहले देखें, 3री सदी ईस्वी में हुए हैं सेंट ऑगस्टिन, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े फलसफी थे और थियोलॉजन थे और सेंट भी थे क्रिश्चियनिटी के अंदर, कमोबेश सभी इनको मानते हैं। तो देखें 354 से 430 में इनकी वफात, इन्होंने उस जमाने में बता दिया था, बड़ी मशहूर इनकी किताबें अभी भी मिल जाती है, कन्फेशंस हैं और द सिटी ऑफ गॉड और बहुत सारे। एनीवे, उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि तुम लोग जो बिलीवर्स हो, ये बेवकूफी ना करो सोचने की कि खुदा कायनात की मखलूकात की तरह कायनात के अंदर बैठा हुआ है और चीजें बना रहा है अपने हाथ से, यूं तख्लीक कर रहा है। सेंट ऑगस्टिन ही वो है जिन्होंने कहा था कि ये जो लिटरल इंटरप्रिटेशन तुम करते हो ना बाइबल की, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन तुम इसको बिल्कुल छोड़ दो, कि ऐसे आदम अलैहि सलाम को भी खुदा ने अपने हाथों से बनाया था, कुरान में भी लफ्ज आते हैं ना अपने हाथ से खुदा ने बनाया। तो उन्होंने उस वक्त लोगों को तवज्जो दिलाई कि ये इस्लाम से पहले का वक्त है, नबी पाक सल्लम के, यानी इस्लाम इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो अभी हम जो मशहूर मानों में बोलते हैं। तो ये उस जमाने में उन्होंने बता दिया, उनका तवज्जो दिलाई कि ये तो बाइबल की इस तरह की चीजों को लिटरल ना लो, वो तुम्हारी लैंग्वेज में बात होती है तो इस तरह बात बयान हो जाती है कि खुदा ने बनाया और ये सब किया। और उन्होंने बताया कि खुदा का कोई तसव्वुर, ये खुदा का शायन शान नहीं है कि उसको मखलूक की जगह पर लाकर और टाइम और स्पेस के अंदर बाउंड समझा जाए, नहीं, टाइम और स्पेस खुदा की क्रिएशन है। वो इसी तरह जो मैंने बड़ा आपको बता दिया डिटेल में कि टाइम कैसे वजूद में आया होगा क्या और सारा कुछ। अब आप ना मेरी थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर समझे कि ये जो टाइम और ये सारी कॉन्सेप्ट है जिनको मैं इस तरह से बयान कर रहा हूँ, तो जो आदमी जरा फलसफियाना तरीके पर चीजों को पढ़ता है वो सारा कुछ करता है, तो मैं किसी फलसफी के सामने भी ये प्रेजेंट करूँ चीजें इस तरह से, तो वो उसको नागवार गुजरेंगी, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट और ये छोटी छोटी चीजें भी, इस पर लाखों किताबें लिखी गई हैं। तो इस वजह से मैं बस एक मॉडर्न डिक्शन में एक आपके साथ बात कर रहा हूँ, और जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, कभी ये ख्याल ना कीजिएगा कि आप तक बात, यानी लाजमी जितनी भी फलसफाना मुश्किल बात हो उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए आम सतह पर भी। लेकिन ये एक थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे कोई आदमी बैठकर, कोई डॉक्टर हो और डॉक्टर के सामने बैठकर वो बड़ी बड़े इस्तलाहात बोलना शुरू कर रहे, तो वो डॉक्टर उसको कहेगा कि भाई होल्ड ऑन, फलसफे में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, इफ्स और बट्स में बात की जाती है। तो एनीवे, वो मैं थोड़ा सा अपना आपके सामने ये ध्यान रखना था कि ये मुझे थोड़ा सा वो महसूस होता है कि जब मैं लिख कर और उस तरह से बयान करूंगा तो इस तरह से शायद ना बयान करूं, लेकिन इसमें ये ना ख्याल कीजिएगा कि इसमें कोई इस तरह के कम्युनिकेशन में कोई गलती है। नहीं, गलती नहीं है, वो होता है, ये फलसफे के यहाँ ये रुझान होता है कि हम जरा बात को बहुत ही एहतियात से बयान करें और बहुत ही पीछे रहकर उसको क्वालिफाई करके। अहमद जावेद साहब को जिन लोगों ने सुना होगा, वो देखिए कितना क्वालिफाई करते हैं चीजों को, लेकिन कुरान मजीद और गांधी साहब के यहाँ पर बिल्कुल दूसरा है कि वो क्वालिफाई नहीं करते चीजों को। और यही वो वजूहात हैं कि लोग मुस्लिम फलसफे भी समझते हैं कि कुरान मजीद तो आम लोगों की किताब है, सो ऑन सो, वहां पर नहीं जाते, लेकिन वापस आते हैं यहीं पर कि सेंट ऑगस्टिन ने उस जमाने में बता दिया था कि खुदा ने इस जमाने मकान में बैठकर नहीं तखलीक की, कायनात की, वक्त खुदा की क्रिएशन है, खुदा वक्त में नहीं है। जो बोएथियस थे, बहुत बड़े फलसफी, ये भी थियोलॉजियन गुजरे हैं, उसके बाद इन्होंने इनके टाइम के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि सेंट थॉमस अक्वाइनस ने इसको दर्जा कमाल तक पहुंचा दिया और उन्होंने इसको बहुत खोला। अब जो कॉन्सेप्ट इन्होंने सेंट थॉमस अक्वाइनस ने इसको खोलकर और बोएथियस ने इसको खोलकर बनाया, वो मेरे ख्याल है मैंने उसमें से बोएथियस का जो टेक्स्ट है वो एक लफ्ज में आपको उठा लिया आपके लिए ताकि बात समझने में आसानी हो। ये एक्सप्लेनेशन है उनकी बात की। खुदा के सामने क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे नहीं है या नहीं होने चाहिए जैसे हमारे सामने है। ये अब देख लें कि ये फिर खुदा के रियल में जाके थोड़ा सा एक बयान करना, ये एक पॉसिबिलिटी का बयान है, एज अ पॉसिबिलिटी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है कि इससे समझ में आती है वो चीज कि ये खुदा के बारे में ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि खुदा के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन खुदा कैसा है हम हतमी तौर पर बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, लिहाजा इसको टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये एक पॉसिबिलिटी है कि खुदा के लिए इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं अपने छोटे लेवल पर कि खुदा के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट यानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो वो क्या होगा उसको इन्होंने बयान किया। ये हमारे इल्म के हदूद से आगे बढ़ने वाली बात है, मैं इसको समझता हूँ, लेकिन इसलिए ये बहुत यूजफुल है कि फिलासफा का काम ही है कि वो इन हदूद को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर पे दर पे गलतियां करते हैं, कुरान मजीद इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको एक पॉसिबिलिटी के तौर पर लें बात समझने के लिए, ये कभी ख्याल न कीजिएगा खुदा के लिए ऐसा ही। तो वो कहते हैं, इट इज एन एट टेम्पोरल प्रेजेंट इन विच गॉड एज ए सिंगल कंप्लीट ग्रेस्प ऑफ ऑल इवेंट्स इन द एंटायर स्पैन ऑफ टाइम। वो ये कह रहे हैं कि खुदा, ये वही बात है स्टीवन हॉकिंग ने आपको पहले समझाई है, ये जो टाइम है इस तरह से गुजर रहा है लम्हात के तौर पर, वो ये जीरो पर टाइम को रोक दें, और अब वो ये कह रहे हैं कि जीरो पर टाइम रुका हुआ है और खुदा के सामने तमाम टाइम जो भी अभी से लेकर आगे तक गुजरना है, ये तमाम टाइम खुदा के सामने एक प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट, मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, एक प्रेजेंट मोमेंट में है। जो ही मैं ये लफ्ज मोमेंट का बोलता हूं तो फिर खुदा के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो इसको बोएथियस कहते हैं इस पर स्ट्रेस करके कि नहीं, ये ए टेम्पोरल प्रेजेंस है खुदा के सामने चीजों की, यानी वो वक्त में चीजें मेरे सामने, कोई आप पिक्चर को पॉज करें, ये पूरी मूवी जो रील की सूरत में चलनी है वो सारी किसी तरीके से आप जो कैसेट्स होती थी वो मेरे सामने रखते हैं, एक मोमेंट में वो सब कुछ मेरे सामने, लेकिन फिर भी एक मोमेंट में मेरे सामने है वो सब। तो वो कहते हैं नहीं, ये जो प्रेजेंस तुम्हारे सामने एक मोमेंट में है ना, यहां से कयास तो कर लो थोड़ा सा, लेकिन खुदा के सामने वो मोमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, हम इसको नहीं समझ सकते, लेकिन कहने का मकसद यह है कि खुदा के लिए वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, तो जितना करीब ला सकते थे वो ले आए उसको। ठीक है, तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशन, डज द क्रिएटर हैव टू बी टेम्पोरल बिफोर क्रिएशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम थियोलॉजियंस ये या बिलीवर्स, हम हमारा अक्सर ये बिलीफ होता है जो कि ना कुरान मजीद में पाया जाता है और ना इस बारे में हम कोई ऐसी अपनी बात कह सकते हैं कि क्या खुदा के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इटर्नल हों, आम कॉन्सेप्ट ये फैला हुआ है इसके बारे में कि नहीं, सिर्फ खुदा ही इटर्नल होगा और कोई मखलूक इटर्नल नहीं हो सकती। इसको सेंट ऑगस्टीन ने इसकी बुनियादें फराहम की और थॉमस अक्वाइनस ने तो अपनी सुमा के अंदर थियोलॉजिका, सुमा थियोलॉजिका, समरी ऑफ हिज थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर इस पर बहुत ही नफीस बहस की है और ये बात बताया है कि बात बताई है कि हम अगर इस पर गौर करें तो ये बात लाजिम नहीं आती कि कोई और चीज इटर्नल नहीं हो सकती। आपको मालूम होगा ना हमारी इस्लामिक फलसफे में भी ये है कि कुरान मजीद मखलूक है या वो इटर्नल है। अगर कुरान इटर्नल भी होता है तो वो जिस तरीके से वैसे उन्होंने डिस्कस किया है उसमें तो वो खुदा की एक ज़ाती सिफत ही करार पाता है, लेकिन जिस तरह से सेंट थॉमस अक्वाइनस वगैरह ने इसको बयान किया है वो ऐसे एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ। वो इस बात को मानते हैं कि कोई और चीज भी खुदा के अलावा इटर्नल हो सकती है। अच्छा, मैंने आपको पहले बयान कर दिया कि गो के ये आम एक फैली हुई बात है लोगों के अंदर कि ये हमारे ईमान के मुनाफी होगा कि हम किसी और चीज को इटर्नल माने, लेकिन ऐसा कोई बात कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। असल बात तो यह है कि हम कह ही नहीं सकते, ना इटर्निटी को समझ सकते हैं, ना किसी चीज के इटर्नल होने पर कोई बहस कर सकते हैं, हमारे ये उससे बाहर की चीज है हमारे रियल ऑफ नॉलेज से। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ऐसी मिसाल से ये बात समझाई है कि टाइम का कॉन्सेप्ट खुदा के बारे में खत्म हो गया ना, तो अब खुदा क्या, क्या खुदा जो है उससे पहले कोई चीज मौजूद हो सकती है, ये तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन खुदा के बाद चीज मौजूद हो सकती है। हाँ, टाइम वजूद में आ सकता है और वो टाइम सिक्वेंशली गुजर सकता है जीरो से आगे, लेकिन क्या खुदा के साथ ही कोई और चीज भी इटर्नल हो सकती है? तो उन्होंने कहा हो सकती है। वो कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि आप रेत के ऊपर बैठे हुए हैं, रेत में आपने अपने पांव इमर्स किए हुए हैं, अब आप इटर्नल वजूद हैं, आप बैठे हुए हैं अपनी इटर्नल मौजूदगी, अपनी इटर्नल वजूदियत में बैठे हुए हैं, तो आपका जो पैर है ना वो रेत के अंदर एक इम्प्रेशन छोड़ रहा है, तो आपके आप से क्या आप से पहले वो इम्प्रेशन मौजूद था? ये आप कह नहीं सकते, पहले और बाद का कह नहीं सकते। वो जूं ही आप मौजूद हैं आपका पैर रेत में पड़ा हुआ, साथ ही वो इम्प्रेशन में नीचे मौजूद है, तो आपकी जात से वो फूटा हुआ एक इम्प्रेशन है, या यूं ना कहा जाए, फूटा हुआ से शिर्क का कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी जात से बेशक वो अलग भी हो, जैसे कि हम मानते हैं कायनात इब्राहिमिक रिलीजन में कि कायनात अलग है, तो वो इम्प्रेशन जो है वो इन द सेंस ऑफ टाइम एक टेम्पोरल रियलिटी के तौर पर आपसे पहले या बाद में नहीं है, बल्कि आपके वजूद के साथ ही वो इटर्नल है, लेकिन वो आपसे निकला हुआ है। आपके वजूद होगा तो वो होगा, आप नहीं होंगे तो फोर्थ का इंप्रेशन भी नहीं होगा। इस तरीके से वो कहते हैं कि कोई इटर्नल चीज खुदा के साथ दूसरी भी हो सकती है। तो ये इन एनी वे ये चीजें हमें जेब नहीं देती कि हम इन चीजों पर वो करें, लेकिन एज अ पॉसिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि स्टीवन हॉकिंग से इतने पहले वो बता चुके थे, और ये चीज तो कम अज कम हम पूरी कुवत से कह सकते हैं ना कि खुदा के लिए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर उन्होंने थोड़ा सा काफी तजावज ये किया है कि एक बता दिया कि खुदा के लिए ऐसा होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद सेंट थॉमस अक्वाइनस और ये सारे जितने बड़े हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि ये सारी बात समझाने के लिए हम तुम्हें बात कर रहे हैं, ये खुदा को इस तरह की आस न करना, वो भी ये कहते हैं। तो एनीवे बात यह है कि खुदा के लिए ना टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसे है और ना उसको क्रिएशन के लिए कोई चीज चाहिए, यानी क्रिएशन के लिए कोई टाइम का कोई कॉन्सेप्ट चाहिए। कुरान मजीद जैसे इसको बयान करता है उसको हम एक हदीस में इसको जल्दी से देख लेते हैं। कुरान मजीद में देखें ये है इस तरह से, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, द आउटर एंड द इनर, ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स। ये जो ये जाहिर और बातिन के यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं उनका अव्वल और आखिर तो ठीक है, जाहिर और बातिन के इसके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कम अज कम जो अभी की जो मरवजा अरबी है उसके अंदर तो आसानी से उसकी और भी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखें कि मैं उस इंटरप्रिटेशन डिफरेंस में भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, नबी पाक सल्लम ने खुद अपनी एक दुआ के अंदर इसकी तशरीह फरमाई है। देखें वो क्या आप सल्लम फरमाते हैं, वो कहते हैं, यानी मैं अभी इम्प्लीकेशन दोनों की इकट्ठी करके आपको बता देता हूँ, मैंने अभी ऊपर की आयत को सिर्फ पढ़ा है, इसमें फर्स्ट और लास्ट और आउटर और इनर, अव्वल और आखिर, जाहिर और बातिन से क्या मुराद है। नबी सल्लम फरमाते हैं, ओ गॉड, यू आर द फर्स्ट, देर इज नॉट बिफोर यू, आप पहले, आपसे पहले कुछ नहीं। जाहिर है हम अपने अल्फाज में इटर्नल कॉन्सेप्ट को ऐसे बयान करेंगे कि अल्लाह ताला है, उनसे पहले कुछ नहीं। यू आर द लास्ट, देर इज नॉट आफ्टर यू, आप आखिरी हैं, आपके आगे भी कोई चीज नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल हमारे जुबान के करीब लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात समझा दी है कि खुदा के लिए वक्त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो इटर्नल बीइंग है। एंड यू आर द आउटर मोस्ट, आप देखें आप सामने आउटर मोस्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, जाहिर को, देर इज नथिंग अबव यू, आपके ऊपर कुछ नहीं। एंड यू आर द इनर मोस्ट, ये बातिन को, देर इज नथिंग बिलो यू, आपसे नीचे भी कुछ नहीं है। तो देखें आप सल्लम ने यहाँ पर दोनों ही तरीकों से कुरान मजीद की तशरीफ फरमा दी है कि ना अल्लाह से पहले कोई है, ना उसके बाद कोई है, ना उसके ऊपर कुछ है, ना उसके नीचे कुछ है। देखें पहली से क्या चीज बनती है, पहली बात से कि गॉड इज बियॉन्ड, अच्छा मोटी सी बात बल्कि जो बनती है, हाँ पहले वो बयान होगी और फिर प्रिसाइज, गॉड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये जो मोटी सी इससे बात निकलती है वो ये है कि खुदा टाइम और स्पेस से माबरा है, उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं। आगे स्पेसिफिक, फॉर नथिंग बिफोर और आफ्टर इंप्लाइज टाइमलेसनेस, कि ना उससे पहले कुछ है ना उसके बाद, ये इटर्निटी को खुदा की या टाइमलेसनेस को बयान करती है। एंड नथिंग अबव और बिलो निगेट्स एनी स्पेशल लोकेशन, ये डिपिक्ट करती है कि खुदा के ऊपर कुछ नहीं है, खुदा के नीचे कुछ नहीं है, वो स्पेस में बाउंड नहीं है। ठीक होगी बात, तो ये हमारे यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट पूरी कुवत से हमें कुरान मजीद ही से मिल जाता है। अब मैं वो पुरानी ट्रेडिशन को और इनको सामने रखकर ये कह रहा हूँ कि इब्राहिमी जो ट्रेडिशन है, देयरफॉर उनके अंदर स्पेस एंड टाइम आर गॉड्स क्रिएशंस, खुदा की मखलूक है, विच केम टू बी विद द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और स्पेस और टाइम हमारी यूनिवर्स जब वजूद में आई तो उसके साथ मुतल्लिक उसके इंटरनल कॉन्सेप्ट है, उसके इंटरनल इंटरनल प्रॉपर्टीज है। This implies that God's primary act of creation is not understood to be in space and time. देखें जब हमारी कायनात वजूद में आएगी, स्टीवन हॉकिंग के साथ हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं कि जब हमारी कायनात वजूद में आएगी तो उसके बाद स्पेस और टाइम वजूद में आएंगे। अगर उसके बाद ये सब कुछ वजूद में आ रहे हैं तो खुदा ने जो कायनात को बनाया उस वक्त तो टाइम था ही नहीं। तो हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं स्टीवन हॉकिंग के साथ कि किसी वर्टिकल किस्म के टाइम के अंदर ही, किस्म में फिर बोल रहा हूँ कि हम पूरी पूरे वसूख से नहीं कह सकते, बस एक टामक टोलियां मार रहे हैं अपने के उसको भी कह के जी वर्टिकल भी टाइम होता है और ये वो। तो स्टीवन हॉकिंग के बिल्कुल हम साथ ही खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम भी ट्रेडिशनली, मैंने आपको बता दिया क्रिश्चियनिटी के ट्रेडिशन से, इसके ट्रेडिशन से कुरान मजीद के, तो इब्राहिमी जो अध्ययन है उनके अंदर हम खुदा का जो पहला उसने कायनात को बनाया वो वक्त में नहीं बनाया बल्कि वक्त के साथ बनाया, जैसे कि सेंट ऑगस्टिन ने सबसे पहले नोन उसके अंदर इसको बयान किया। अच्छा तो ये यहां पर ये इस पर मेरा तबसरा जो कि मैंने मोटी सी बात आपको कम्युनिकेट करनी थी वो मैंने कर दी है, ये हमारा यहाँ पर ये एक चीज खत्म हो जाती है। इसके बाद अब मैंने थोड़ी सी आप लोगों को लॉज ऑफ फिजिक्स के हवाले से बात करनी थी, क्योंकि स्टीवन हॉकिंग ने यहाँ पर ये भी बात कर दी ना, नो बाउंड्री कंडीशन को ही बल्कि एक्सप्लेन करते हुए ये बात कर दी कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो थे वो मौजूद थे उस स्पेस के अंदर भी, जो पहले से स्पेस प्रिमिटिव थी उसमें भी, और फिर हमारी कायनात में भी लॉज ऑफ फिजिक्स मौजूद है। तो लॉज ऑफ फिजिक्स मौजूद हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स कुछ काम कर रहे हैं वहां पर, खुदा की तरह से कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या मसला हो गया कि खुदा खत्म हो गया लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स अभी तक मौजूद है। इस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ जी, ये भी सब एक साथ आ गए, इनको सिक्वेंशली आना चाहिए। If laws of physics could bring about changes in the timeless world, why deny the same for God? Pehla sawal jo maine uthaya wo ye ki us kainat ke andar bhi to imaginary time mein, jaise Stephen Hawking bayan karte hain, laws of physics apna kaam kar rahe hain. To jab laws of physics kar rahe hain to khuda ke bare mein aap ye kyun kehte hain ki khuda ke liye time hi nahi tha ki usme wo kuch kar sake. Bhai time imaginary time khuda ke liye bhi to ho sakta hai. क्यों नहीं इसमें क्या माने, और हम कह रहे हैं कि खुदा ने इस तरह के रियल टाइम में कायनात को नहीं बनाया, तो हम भी वही बात मान रहे हैं आप वाली, आप उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स को करामत मान रहे हैं, खुदा को बेकार कर दिया आपने उसमें, बल्कि उड़ा ही दिए कि खुदा के लिए, खुदा के वजूद के लिए भी, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो खुदा के वजूद के लिए इस सेंस में कि जो क्रिएटिव खुदा है उसके वहां पर करने के लिए कोई काम ही नहीं। पहली बात मैंने वो लॉज ऑफ फिजिक्स के हवाले से ये चीज उठा दी। इससे भी ज्यादा संगीन बात अभी आप देखेंगे, क्या लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो खुदा को रिप्लेस कर सकते हैं? इसका हम पहले भी हिंट कर चुके हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। लॉज ऑफ फिजिक्स या कोई मिसालें दे, इक्वल्स एमसी स्क्वायर, इसको लॉ ऑफ फिजिक्स कहा जा सकता है पूरे जोर से, हर लिहाज से पूरा उतरता है लॉ की डेफिनेशन पर, कि एनर्जी और मैस जो है वो इंटरचेंजेबल है, और मैस और एनर्जी इस इक्वेशन के, सो टू स्पीक, आप कह ले मुताबिक काम करते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से निकली है? ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में से निकली है। और इसको हम मानते क्यों है? क्योंकि जब जितनी ऑब्जर्वेशन हमने की है कायनात के अंदर वो इसके मुताबिक है। लेकिन ये सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी, इसकी कोई हकीकत नहीं थी जब ये आइंस्टाइन की इक्वेशन में से निकल रही थी। ये हकीकत तब बना जबकि हर जगह इसने हर टेस्ट को पास किया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बात यह है कि लॉ ऑफ फिजिक्स आप किसको कहेंगे? पहले मुझे, मेरे पास बैरून में दुनिया के अंदर एनर्जी होनी चाहिए या मैस होना चाहिए? वो मैस और एनर्जी इस रिलेशन के अंदर काम करते हैं। मैस और एनर्जी मुझे आप पड़े हो मेरे सामने, वो इस रिलेशन में काम करते हैं, उस रिलेशन को मैं पेपर पर लिखता हूं या अपने दिमाग में सोचता हूं, तो लॉ ऑफ फिजिक्स वजूद में आता है। लॉ ऑफ फिजिक्स खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, यानी इस सेंस में कि ये एक लिखी हुई चीज आपके सामने यहाँ मौजूद है, या फिर ये वो चीजें हैं जो कि कायनात के अंदर, यानी कार फरमा है इस सेंस में कि एनर्जी की ये इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो मैस में तब्दील हो जाती है इस रिलेशन के साथ, और मैस की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी मैस से तब्दील हो जाता है। तो बाहर एनर्जी और मैस मुझे पहले पड़े हुए चाहिए, उनके अंदर कुछ खास मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए, उन प्रॉपर्टी से ये लॉज फूटते हैं। ये लॉज ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के जैसे लॉज हो जो कि लिखा हुआ हो कि आप सब लोगों ने कल टोपी पहन कर आनी है और ये स्टेट लॉ बन गया। तो अब वो लॉ कहीं पर लिखा हुआ है और उस लॉ के मुताबिक हम लोग उस लॉ से अलग काम कर रहे हैं, नहीं। ये जितने लॉज ऑफ फिजिक्स हैं या लॉज ऑफ साइंस है, ये उस कायनात के अंदर मौजूद है, और उस कायनात कायनात की प्रॉपर्टीज और उस कायनात की पोटेंशियल और उस कायनात की सलाहियतें हैं। उन सलाहियतों को हम अपनी एक लॉ की सूरत में, एक कंसाइज फॉर्म में बयान कर देते हैं और अपनी कॉपी में या अपने जहन में लिख लेते हैं उसको, ठीक है। अब एक आम और एक लॉ टाइप चीज को आप जहन में लाएं कि वाटर कीप्स इट्स सरफेस लेवल, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। पानी बाहर मौजूद है, वो अपनी सतह को हमवार रखता है, तो ये उसका बयान है। पानी मुझे दें तो फिर ये बयान होगा, पानी से पहले ये बयान कैसे हो जाए? वो एक सेंस में हो सकता है, अभी बताता हूँ आपको। साथ ही एक और मिसाल आप ले लें एक पानी ही की तरह की, कि सूरज रोज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। इसको भी स्टीवन हॉकिंग ने उठाया और कहा है कि लॉ ऑफ फिजिक्स इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मजीद क्वालिफाई किया। चलिए इसी को उठा लेते हैं, सूरज होगा, जमीन इस तरह से घूमेगी, ये सब कुछ हो रहा होगा, तो उसको मैं बयान करूंगा ना कि कल सूरज जो है वो मशरिक से निकलेगा, मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस कायनात और इसमें पाई गई अशिया से बगैर। ये न्यूटन का लॉ है कि टू एवरी एक्शन देर इज अ रिस्पॉन्सिव रिएक्शन इक्वल इन अमाउंट एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले मुझे कोई चीज दें जो कि बॉल दें जो एक्शन परफॉर्म करे, तो वो फिर वहीं से इक्वल रिएक्शन होगा उसका और वो वापस आपकी तरफ आएगी। वो एक हमें इक्वल रिएक्शन नजर क्यों नहीं आता, वो अलग बात है फ्रिक्शन वगैरह की वजह से। मुझे आप कोई रोबोट दें, वो किसी चीज को मारेगा, तो जिस चीज से मारेगा उसका कोई इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, वो चीज टूटेगी और सारा ना। तो मुझे ये रोबोट या वो बॉल पहले चाहिए, उसके बाद ये हो, वरना ये लॉस कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये सिर्फ एक सूरत में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से एडगर आंजोस और रॉजर पेनरोज इसको कहते हैं, वो है प्लेटोनिक सेंस में। प्लेटोनिक सेंस का मतलब ये है कि जो अफलातून की जो दुनिया थी ना, कि ये असल दुनिया ये नहीं है, ये परतो है एक ख्याली दुनिया का जिसको प्योर फॉर्म्स कहते हैं, और वो जो ख्याली दुनिया है उसका उसका परताव पड़ता है, तो ये हमारे सामने कंडेंस किस्म की इस तरह की दुनिया वजूद में आती है। हाँ, इसको एक और तरीके से बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं नुआंसेस में नहीं जाऊंगा। वो बयान करते हैं कि वहां पर वो प्योर घोड़ा और वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल वो इस तरह से नहीं जैसे यहाँ पर है। लेकिन एनीवे, हम सिर्फ प्लेटोनिक सेंस में जाते हैं। वो प्लेटोनिक सेंस ये है कि ये लॉज मौजूद हों लेकिन कायनात की कोई चीज ना हो। तो अब आप मुझे खुद बताएं थोड़ी देर के लिए गौर करके कि कवानीन मौजूद हैं ये वाले इक्वल एम सी स्क्वायर मौजूद है, आर्किटेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो मौजूद है, लेकिन कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं, तो ये कहाँ पर होने चाहिए? कोई आप में से अगर इस पर बात करना चाहे तो ये लॉस जो मैंने कायनात को देखा उधर से एक चीज लिख ली यहाँ पर, ये सारी की सारी मेरी एक्टिविटी क्या है, ये कहाँ होने चाहिए लॉस? ना पेपर है ना पेंसिल है, मैं भी नहीं हूं, मेरा जहन भी नहीं है। तो ये अभी क्योंकि वक्त कम है तो ये किसी ऐसे मीडियम में होने चाहिए जो जो कम से कम माइंड हो, तो इनको सो टू स्पीक माइंड ऑफ गॉड में होना चाहिए। यानी इनके लिए लॉज के जितना मर्जी तजिया कर ले, मैथमेटिकल हकीकते हैं, ये हकीकते हैं आपके पूरी सारी की सारी मैथमेटिकल लॉज के ऊपर आपकी सारी जहनी कार्रवाई है जो कि आप बैरूने दुनिया को देखकर आप करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो इनकी बेस्ट जगह जो है वो माइंड ऑफ गॉड है। यहाँ पर भी आकर लॉज ऑफ फिजिक्स तक जब आपकी फिजिक्स की वो चीज रुकती है कि फिजिक्स के लॉज मौजूद थे और ये कुछ कर रहे थे और ये कर रहे थे और वो कर रहे थे, जो कुछ भी इस तरह लिखे हुए लॉज तो कुछ नहीं कर सकते। वो जब जहूर में आएंगे और मादे मादे के वजूद के बाद उसमें से मादे की प्रॉपर्टीज के तौर पर फूटेंगे तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे उस पर। और उससे पहले ये कैसे कहा जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स है जिन्होंने कायनात को वजूद बख्श दिया? कायनात के बाद पैदा होते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स, पानी के बाद पानी अपनी सतह हमवार रखेगा, उससे पहले लॉज कैसे मौजूद होंगे? एक ही जरिए, वो ये कि किसी एजेंट के जहन के अंदर वह मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये खुदा का जो माइंड है वो जरूरी हो जाता है कायनात को बताने के लिए। यही जो प्रोफेसर एडगर एंड्रयूज तशरीफ लाए थे, उन्होंने अपनी किताब में फंसी पढ़ी हुई है, मैंने कहा जी ये व्हाट इज मैन, इसमें से उन्होंने पढ़कर सुनाया था अपने इकतबास, और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बाकी लोगों ने भी वाजे किया, इसमें बहुत ही क्लियरली उन्होंने इस बात को वाजे किया है कि माइंड कि माइंड ऑफ गॉड वो बेस्ट मीडियम और प्लेस है, बल्कि बेस्ट क्या, एक वाहिद मीडियम वो है जिसको हम अपने इल्म की हद तक कयास कर सकते हैं कि ये किसी जहन में मौजूद होगी। लेकिन ये बार बार तवज्जो दिलाने की जरूरत होती है कि जब हम माइंड ऑफ गॉड भी बोलते हैं तो खुदा का जहन वैसा नहीं है जैसे हमारे जहन। इसको इस पर बहुत तफसील इसकी की जा सकती है, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जहां तक समझ सकते हैं वो हमारी समझ यहाँ पर खत्म होती है। तो ये लॉज ऑफ फिजिक्स की बात यहाँ पर खत्म हो गई। इस पर दो मजीद कॉन्सेप्ट रह गए हैं, मैं देखता हूँ 15-1 मिनट के अंदर हम कहाँ तक पहुंचते हैं। साथ एक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया कि स्टीवन हॉकिंग ने बयान किया कि बबल्स की सूरत में जो चीज वजूद में आ रही थी वो कोई एक कायनात नहीं थी, वो बहुत सारी कायनातें थी। तो ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट खुदा के बराबर में रख दिया जाता है। वो कैसे रख दिया जाता है? एक तो ये यही कि ये इटर्नल है, ठीक है, और दूसरा आप में से किसी का माइक खुला हुआ, दूसरा ये है कि इस तरह की इन्फिनिट कायनातें फूट रही हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक कायनात के लॉज ऑफ फिजिक्स या एक कायनात के अंदर पोटेंशियल को ऐसा मौजूद हो कि वो जिंदगी को वजूद बख्शते और हम जैसे अजहान को लोगों को वजूद बख्शते। तो मैं इसको बस पढ़ देता हूँ। Our universe seems to be one of many, each with different laws. ठीक है, वो यूनिवर्सेस जो बबल के तौर पर वजूद में आ रही है उनके अंदर लॉज डिफरेंट है ना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो असल जो फंडामेंटल लॉज होंगे वो तो प्राइमोर्डियल सूप के होंगे। That multiverse idea is not a notion invented to account for the miracle of fine tuning. ये कि कायनात के अंदर जो लॉज हैं वो इतने फाइन ट्यून्ड हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा भी उलट फेर हो जाए, जरा सा भी जमीन सूरज के करीब होती या दूर होती या ग्रेविटी का जो कॉन्स्टेंट है जिसके वजह से एक्सपेंशन हो रही है, सो टू स्पीक वजह से, ये फिजिसिस्ट की जुबान में बात कर रहा हूँ, उसकी उसमें थोड़ा सा वो कम ज्यादा होती 0.0001% भी, तो कायनात ऐसे फैलती कोई चीज वजूद में ना आ सकती या फिर एक ब्रेक क्रंच हो जाता वो तबाह हो जाती। तो बिल्कुल एक जिस तरह बयान करते हैं कि सुई के का जो जो फेस है उसके ऊपर कायनात डेलिकेटली बैलेंस्ड है, बिल्कुल। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के एक इस तरह का ये हादसा कैसे हो गया, क्योंकि अब खुदा तो उनकी पिक्चर में नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये हादसा हो गया, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अच्छा ये मल्टीवर्स की वजह से हादसा हो गया, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस कि मल्टीवर्स जो है वो कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द नो बाउंड्री कंडीशन एज वेल एज मेनी अदर थियरीज ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। वो थोड़ा सा बयान करने की, इसको जान देने की कोशिश कर रहे हैं कि नो बाउंड्री कंडीशन का और बाकी मॉडर्न थियरीज जो है कॉस्मोलॉजी की, उनका ये एक एक मंतिकी इंजाम है, ये मंतिकी वो है कंक्लूजन है मल्टीवर्स। लेकिन अब गौर करें तो ये जो बाकी चीजें हैं ये भी अभी वेल स्टेब्लिश नहीं है जिनके ऊपर मल्टीवर्स फिर कायम है, तो ये कोई साइंस नहीं है, ये जहन में रखिएगा। बट इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, देन इन द सेम वे दैट द एनवायरमेंटल, ये वो कह रहे हैं कि मैं बता देता हूँ आपको बोलकर, कि जैसे हमारा जैसे सोलर सिस्टम है इसको बड़ा स्पेशल समझा जाता था पहले, लेकिन अब पता चला कि इस तरह के बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद है जिनके सोलर सिस्टम्स मौजूद है। तो ये कोई खास इस हवाले से कोई खास चीज नहीं हो गई यहाँ पर कि बिलियंस मौजूद है, तो उनमें से एक ऐसा है कि उसमें बिल्कुल सूरज से हमारा फासला एक एक, एक खास फासला है और उस पर जिंदगी वजूद में आ गई, क्योंकि करोड़ों है तो ये हादसाती तौर पर ये चीज हो सकती है। ठीक है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर कुछ कमेंट्री थी जो मैंने आपके सामने पेश करनी थी। पहली वही बात कि मल्टीवर्स बिल्कुल एक स्पेकुलेशन है, ये साइंस नहीं है, इसको एक हकीकत के तौर पर पेश बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, जो कि बाज बाज के बहुत सारे मॉडर्न फिजिसिस्ट करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे उन्होंने इसके अंदर एक इसमें से खुदा के कॉन्सेप्ट को उड़ाने की कोशिश की है और ये कहा है कि बहुत सारी ऐसी कायनात हैं उसमें से एक कायनात में ऐसे हो रहा है, तो इसको मैंने एक एनालॉजी के जरिए से आप लोगों के सामने इसको पेश करता हूँ कि ये जो रेत आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रही है, इसमें से कोई एक रेत के कितने बेशुमार जर्रे हैं, इसमें से कोई एक जर्रा उठे आपके सामने और वो स्लोली बाकी जरात को शामिल करके करके कर, कर, कर करता चला जाए और एक पूरा का पूरा ऐसा प्लांट वजूद में आ जाए जिसमें से आपको टॉप ऑफ द लाइन BMW निकलती हुई प्रोड्यूस होती हुई मिल रही। ये मैं जरा एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ कि जैसे जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर हम दुरुस्त मान लेते हैं और हम देखते हैं कि खुद ब खुद ही जो जिंदगी थियरी ऑफ एवोल्यूशन से पहले जिंदगी के एवोल्यूशन का भी इसी कायनात से फूटा हुआ एक हादसा मान लेते हैं या उसके अंदर एक पोटेंशियल मौजूद था जैसे भी इसको मान लेते हैं, तो वो चीज मौजूद थी आपके सामने जिंदगी प्रिमिटिव अपनी फॉर्म के अंदर, बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर, सिंगल सेलुलर थी, उससे मल्टी सेलुलर बना, उससे ये बना और वो बना। तो मैं उस एनालॉजी को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप बेशक जानदारों का के बारे में ना सोचें, आप जानदारों से कम तक चीज को सोच लें कि आपकी करोड़ साल जिंदगी है, आप बैठे हैं देख रहे हैं कि अचानक से एक डांस शुरू होता है यहाँ पर इसके रेत के जरात का और वो मिलकर एक एक पूरा खुद ब खुद ही नेचुरल तरीकों से, कोई खुदा नजर नहीं आता बीच में, लेकिन वो मिलकर पूरे मैथमेटिकल रियलिटीज के को रूब अमल करते हुए एक प्लांट खड़ा कर देते हैं जिसमें से BMW निकल रही हैं। बाकी बेशुमार रेत के ऐसे रेगिस्तान करोड़ों मौजूद हैं, लेकिन एक में ऐसा हो रहा है, एक में ऐसा हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना, वो तो आप ये कह दें कि ये खुद बखुद ऐसे हो रहा है, बाय चांस ऐसा हो गया, तो बाय चांस सिर्फ एक लफ्ज है जो आप बोल देते हैं, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी, आपको फिर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैसे एक जरा ये ऐसा उसमें उसके अंदर ये पोटेंशियल कहां से आ गया। इसको अभी आप लोगों के जहन अजहान में कुछ शुभात होंगे, मैं इसको भी अभी आगे, ये तो प्रिलिमिनरी हमारी कमेंट्री है, क्रिटिसिज्म है, इसको भी मजीद देखते हैं। एक अजम्पशन ये है इसके अंदर के बहुत सारी कायनातें जो मौजूद हैं उनमें से अक्सर कायनातों में उनका कोई पर्पज नहीं है या उनके अंदर कोई जिंदगी वजूद में नहीं, वजूद पजीर नहीं हुई। आपको ये कैसे मालूम है, ये आपकी अजम्पशन है कि उनके अंदर जिंदगी नहीं है, जैसे कुरान मजीद हमें बताता है कि सात कायनातें और भी और सात जमीनें उन्हीं की तरह की, तो उनका भी पर्पज हो सकता है अगर कायनातें मुख्तलिफ फूटी हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो पत्थर के बिल्कुल ढेर हैं बहुत सारे, उनमें बस एक में हादसाती तौर पर ये हो गया। पहले तो मैंने हादसाती बात को भी मैं कहता हूँ कि उसमें भी मसला है, उसको ऐसे माना नहीं जा सकता। दूसरा मैं ये कहता हूँ, आपको कैसे पता है कि सिर्फ हमारी कायनात में ये हादसाती तौर पर हो रहा है, बाकी कायनातें इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्यों नहीं हो सकती, उनमें हमसे भी ज्यादा बेहतर लाइफ फॉर्म्स क्यों नहीं हो सकती। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि स्टीवन हॉकिंग का जो फाइनल पेपर है उन्होंने हेटॉक के साथ लिखा है, बहुत उनके मशहूर कोलेबोरेटिव्स में से हैं ये, बल्कि नो बाउंड्री कंडीशन में भी इनका भी हॉकिंग हार्टल और हैटॉक तीनों का हिस्सा, लास्ट पेपर है उनके डेथ से पहले, उसके अंदर स्टीवन हॉकिंग ने और हेटॉग ने क्या काम किया, अपनी ये दोनों अजम्पशंस उड़ा दी, वो बैक टू स्क्वायर वन आ गया। वो क्या किया उन्होंने उस पेपर के तहत, वो बताते हैं कि शुरू में उन्होंने जब ये किताब लिखी तो बताया कि ऑलमोस्ट इन्फिनिट यूनिवर्सिटीज हैं, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट इन्फिनिट है वो नंबर में यूनिवर्सिटीज, इतनी यूनिवर्सिटीज है जितने पार्टिकल्स हमारी कायनात में नहीं है, जितने पार्टिकल्स मौजूद है कायनात में उससे भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज। उन्होंने इस पेपर में क्या किया, अपना सारा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को रिवाइज किया और डाउन साइज कर दी, बताया कि नहीं वो मैनेजेबल साइज है, इनफिनिट नंबर ऑफ साइज है यूनिवर्सिस का जितनी मौजूद होनी चाहिए हमारे मैथमेटिक्स से। एक ये काम किया, दूसरा काम ये किया कि वो सारी की सारी कमोबेश एक तरह की यूनिवर्सिस, दोनों ही चीजें जो कि वो पहले पेश कर रहे थे खुदा के, खुदा के पैरेलल रखकर यूनिवर्सिस को, और इतफाकी तौर पर कह रहे थे कि हादसाती तौर पर ऐसा हो गया होगा, वो उन्होंने दोनों चीजें उड़ा दी। जैसे बयान किया ना कि इस तरह के बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं, तो अब बिलियंस ऑफ यूनिवर्सिस माना जाए तो उनमें से एक हादसाती तौर, अब वो बिलियंस ऑफ यूनिवर्सिस डाउन साइज हो गए, वो फाइनाइट नंबर, मैनेजेबल नंबर, हजार कह लें, 10,000, 20,000 कह लें, उनमें अब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज के तौर पर एनीवे वो बहुत बात बनती नहीं है कि आप कहें कि हादसाती तौर पर यह हो गया। दूसरा एक बड़ा मामला ये कि उनके लॉ सारे के सारे मिलते जुलते हैं, इसका मतलब ये है कि ज्यादा करीने क्यास बात यह है कि अगर ऐसी कोई मल्टीवर्स है, यूनिवर्सिस पाई जाती है, उनका उनसे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम देख नहीं सकते, अगर पाई जाती तो उनमें लॉज ऑफ फिजिक्स ऐसे ही हैं जैसे हमारी कायनात में, तो खुद आप सोचें कि अगर इसी तरह क्या, तो उसमें तो ये बदरजा उत्तम, मतलब ये आप मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसका भी इम्कान पैदा हो गया कि हमसे भी कोई हायर इंटेलिजेंस वगैरह उसमें वजूद में आ गई। आप देखें कि हम जो खुदा के बारे में सारा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इसमें हम इसको एक कायनात को एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तरीके पर देख रहे हैं, और आप लोगों ने यह भी देखा कि खुदा का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो थियोलॉजियंस का जो काम होता है उसमें, उसके जरिए से खुदा का कॉन्सेप्ट हमारे सामने भी तगैर पजीर होता है, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर अपने खुदा खुदा के जो बचकाना कॉन्सेप्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि सिर्फ साइंस में चीजें तगैर पजीर होती, नहीं, थियोलॉजी के अंदर भी, मजबियात में भी चीजें, खुदा के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इवन साइंस की रोशनी में बाज़ औक़ात वो तगैर पजीर होते हैं। तो अब हम बाय एनालॉजी ये कह सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम भी खुद ब खुद ये चीजें काम कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बनाने वाला इनके इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, जैसे कि बाज़ लोगों का ख्याल है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो बनाने वाला जब मर्जी इंटरफेयर करे, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बनाने वाले ने अपने आप को पीछे रखा हुआ, वो सामने नहीं आता। इसका रेहान भाई आपको बेहतर बता चुके होंगे अपने लेक्चर्स में कि वो क्यों ऐसा है। अब हम जी आखिरी उस पर आते हैं बात पर, कि हमने देख लिया कि नो बाउंड्री कंडीशन से खुदा खत्म नहीं होता, टाइम को खत्म करने से, मल्टीवर्स से खुदा खत्म नहीं होता। तो अब एक तीसरा हमारे सामने बड़े जोर से एक चीज पेश की जाती है कि खुदा जो है उसके बारे में आप जितनी उसकी सिफात देखें, इसको रिचर्ड डॉकिंस ने गॉड डिल्यूजन के अंदर पेश किया है, उसकी आप जितनी खुदा की सिफात देखें, चले आ जाने दें इसको सामने, मैं आपको ये बोलकर बता देता हूँ, जितनी खुदा की सिफात हमारे सामने है कि वो क्रिएटर भी है, उसका एक बरतर जहन होना चाहिए या जहन की तरह वो काम करता है, हर चीज को जानता है पहले से, और ये सारी चीजें, तो खुदा को एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की एंटिटी होना चाहिए। तो खुदा अगर एक कॉम्प्लेक्स किस्म की एंटिटी है, जैसे इस कायनात की एंटिटीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है कॉन्सेप्ट, वो ये कि जैसे मोबाइल फोन का देखिए, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको जोड़कर ये बनाया गया, और एक कॉम्प्लेक्स होल में वो सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में काम करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ कायनात के अंदर सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनके अंदर वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि खुदा ताला के बारे में जब हम सोचते हैं कि वो बैठा हुआ है किसी मतलब चने बैठा हुआ का तो हम लोग भी नहीं कहते, अगर हमारे इस्तेलाहात में प्योर इस्तेलाहात में बात की जाए तो खुदा ओमनिशंट है, हर चीज का इल्म रखता है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर अपने इल्म के लिहाज से जैसे भी मौजूद है, वो नहायत पावरफुल है, जिसको क्या कहते हैं, ओमनी पोटेंट कहते हैं जिसको। तो ये सारी चीजें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एंटिटी का जहन के अंदर ख्याल पैदा होता है हमारे। तो अब वो कहते हैं कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ये कायनात जो है उसको तुम एक्सप्लेन करते हो एक और कॉम्प्लेक्स एंटिटी से जो खुदा है, तो ये सवाल पूरी ताकत से पैदा हो रहा था कि खुदा का फिर खालिक कौन। तो इसका जवाब हम ये देते हैं कि इस क्रिटिसिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है, इट अज्यूम्स गॉड टू बी ऑफ द सेम काइंड एज अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि खुदा को क्यास कर लिया जाता है कायनात की बनी हुई चीजों के ऊपर, हालांकि खुदा बाइबल की पहली डेफिनेशन में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ये आप इसको अपने वक्त में पढ़ लीजिएगा, जिसमें एक्सप्लिसिटली बयान किया जाता है जो है ना स्क्रिप्चर्स, ये हमारी जुबान में बात करती हैं कि खुदा ने कायनात को बनाया और इस तरह और उस तरह किया, ये हमारी कमजोरी है, वरना हम खुदा का कोई तसव्वुर कायम ही नहीं कर सके। स्क्रिप्चर्स एक्सप्लिसिट हैं कि ये देखें, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी, ये बाइबल से मैंने आपको इंतखाब करके ये बता दिया, और ये जो इकतबास है ये बताता है कि पुराने लोगों की इस बात को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है स्क्रिप्चर्स के अंदर। कुरान मजीद ने इसको बिल्कुल मुतय्यन कर कर मुख्तलिफ मकामात पर बता दिए कि खुदा जो है, जो ये आप में से अक्सर लोगों को सूरत याद भी होगी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो खुदा ताला के बारे में बात बयान की गई है कि अल्लाह ताला जो है उस जैसा कोई भी नहीं है। अहद के लफ्ज में भी ये यूनिकनेस है, और उसके बाद अहादी के लफ्ज के अंदर ये जो शुरू में और आखिर में इस्तेमाल हुआ, तो ये जो हम सूरत जो अपनी पढ़ते हैं रोजाना नमाजों के अंदर, इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर बिल्कुल साफ तरीके पर दूसरी जगह पर भी ये बात बता दी गई है कि खुदा को, खुदा इस कायनात के मिसल को शय नहीं है, वो इस कायनात में से किसी के भी चीज से रिजेम्बलेंस नहीं है उसकी। और दूसरी बात ये बता दी गई है कि खुदा के बारे में मिसालें ना बनाओ अपनी तरफ से, सिर्फ वही मिसालें पेश की जा सकती हैं जो कि खुदा खुद अपने बारे में बनाते हैं, स्क्रिप्चर में मिसालें पेश कर देते हैं, अपने जहन से ना बनाओ, तखयलात के ऊपर खुदा के बारे में बात ना करो। तो खुदा के बारे में जितना हमें स्क्रिप्चर से मालूम होता है वो उसकी सिफात का एक बयान है कि खुदा ने ये चीज बना दी, खुदा देखता है सुनता है, लेकिन उसका देखना सुनना बनाना बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं है। हत्ता कि हम कहते हैं कि माइंड ऑफ गॉड, वो माइंड भी हम जैसा माइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा माइंड चीजों को सिक्वेंशली सोचता और इसकी महदूदियतें हैं, ये नॉलेज अक्स करता है, खुदा का नॉलेज अक्स किया हुआ है ही नहीं। तो खुदा इस कायनात में किसी शय के ममसल उसको करार नहीं दिया जा सकता। तो इसको अगर मैं ब्रीफली बयान करूं तो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज जो हैं, जो हमारे एक मॉडर्न एक्सपीरियंस से वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के जनरेट हो रहे होते हैं, वो खुदा पर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए हमारा इवन हमारा जो मुतखयल है, हमारा ख्याल है, वो कैसे जनरेट होता है। हम इस कायनात में आंख खोलते हैं, इसको हम देखना शुरू करते हैं, इससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, यहां से हमारा अंदर का और बाहर का जो पहले से एक, जैसे कंप्यूटर्स के अंदर पहले एल्गोरिदम होता है, इनपुट लेने की सलाहियत होती है, इनपुट अंदर जाती है तो कंप्यूटर उसको एनालाइज करता है सारा। तो हमारा भी जो एल्गोरिदम है पहले से अंदर मौजूद, जिसको आप इस्तिरारी इल्म कहते हैं, इमाम फराही, वो मौजूद है, बाहर की दुनिया सामने आती है तो एक्सपीरियंस हमारा जुड़ता है आपस में, इस एक्सपीरियंस इन दोनों के मिलाप से जो इल्म हासिल होता है उसी के ऊपर हम क्यास करके इसी दुनिया में घूमते रहते हैं, तो खुदा को भी अपने ऊपर क्यास करते हैं। तो ये मसला है उसके, इस जो स्टीव, जो रिचर्ड डॉकिंस वगैरह का, इवन स्टीवन हॉकिंग ने भी ये सवाल उठाया उनका, वो खुदा को एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, वो कह रहे हैं कि खुदा को भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। साइंटिफिक क्या है कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन, साइंटिफिक, मैं इसको दो मिनट में खत्म कर, साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि ये जैसे एक चीज बनी हुई है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को जोड़ा गया एक होल में, और वो होल एक कॉम्प्लेक्स हकीकत को बनाता है। मेरे घर को देख, ब्रिक्स और सारी चीजें एक कॉम्प्लेक्स होल को, एक खास पर्पसफुल तरीके से कॉम्प्लेक्स होल जुड़ा हुआ है, वो काम कर रहे हैं। अपनी बॉडी को देख, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, छोटे पार्ट से बड़े पार्ट्स, बड़े पार्ट्स आपस में हम आहंग तरीके से काम करते चले जा रहे हैं। तो खुदा का तो हम पहले से ही कह रहे हैं, पहले दिन से ही इब्राहिमी मज़ाहिब के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि खुदा इस दुनिया में, उसके पार्ट्स नहीं है, वो कोई बनी हुई चीज नहीं है कि पार्ट्स एक कॉम्प्लेक्स होल में काम कर रहे हैं। बार बार ये याद दहानी कराई जाती है कि खुदा की मिसालें ना बनाओ, जितनी जुबान और सारा बयान है खुदा के बारे में, ये मेटाफर्स हैं, ये एनालॉजीज हैं, ये तरह तुम बात समझाने के लिए बात, खुदा हंस रहा है, खुश हो रहा है, सारा कुछ, ये हम खुदा के साथ एक साइकोलॉजिकल ताल्लुक पैदा करने के लिए बात करते हैं। खुदा का हंसना और ये सारी चीजें हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो बनने का, बनी हुई चीज का कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन किस चीज की होगी? कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी है जो बनी हुई आपको नजर आ रही है और किसी पर्पसफुल तरीके पर काम कर रही है, जैसे जिंदगी मेरा वजूद, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो खुदा, अगर हम ये कहें कि वो एंटिटी है ही नहीं इस तरह की, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन का सवाल पैदा ही नहीं होता। एक्सप्लेनेशन का तो सवाल पैदा होता है कॉम्प्लेक्स एंटिटी मौजूद होता है। इसकी एक मिसाल के साथ मैं इसको खत्म करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए जहन में एक और एनालॉजी ड्रॉ करें। आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है, गट के अंदर हर आदमी के बैक्टीरिया है ना, वो गट बैक्टीरिया को कोई उनके अंदर माज अल्लाह कोई एक बड़ा, मैं पैगम्बर तो नहीं कहूंगा, बड़ा एक वाइज मैन हो, वो उन बैक्टीरिया को बताया जाके कि भाई तुम्हारे तुम्हारे वजूद को कायम रखे हुए एक इंसान है जिसकी गट के अंदर तुम मौजूद हो, और उसने इस तरह से मुझे जैसे बैक्टीरिया को कम्युनिकेट की जा सकती है, अगर बात हो किसी ने कम्युनिकेट की है, रिवील की है किसी इंसान ने ये बात जिसने मुझसे रब्ता किया, वो सारे हंसना शुरू हो जाए उसके ऊपर, वो कहें कि कैसी लगभग बात करते हो, कैसे हंसना शुरू हो जाए, वो अपनी दुनिया के ऊपर कयास करें कि अगर वो खुदा मौजूद है, और वो एक खुदा नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं जिनके गट्स के अंदर हम मौजूद हैं, तो बैक्टीरिया कैसे फैलता है, बैक्टीरिया का एक एक सेल होगा, वो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो दो चार में डिवाइड हो जाते हैं। बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना सकता क्योंकि उसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो वो जो बताने वाला वाइस मैन है वो ये कहे कि वो बहुत सारे लोग हैं और उनमें से आगे उनकी नस्ल भी आगे चलती है। अब जो गट के अंदर बैक्टीरिया रहने वाले हैं वो आगे सवाल ये उठा दें कि बेवकूफ आदमी तुम बिल्कुल लगभग बात कर रहे हो, अगर तो तुम फलां किसी जैद के गट के अंदर मौजूद हो तो जैद को दो में डिवाइड होना चाहिए, जैद दो में डिवाइड होगा तो उसकी गट भी दो में डिवाइड होगी, तो आधे हमारे जो बैक्टीरिया ब्रदरन हैं और हम वो हमसे जुदा होते हुए हमें नजर आएंगे, तो अब वो बैक्टीरिया क्या गलती कर रहे हैं? वो जो बंदा बात बयान कर रहा है वो गलत बात नहीं बयान कर रहा, बैक्टीरिया की गलती ये है कि अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को वो इंसानों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान को भी दो में इस तरह डिवाइड हो जाना चाहिए जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, और एक उनके भाई इधर जाते हुए नजर आए, किधर नजर आए, हालांकि इंसानों का जो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो उनके दुनिया पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से खुदा कैसे देखता है, खुदा कैसे काम करता है, सारा हम उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, इल्ला ये कि बैक्टीरिया को एक जहन दे अपने सामने बिठाए और उनको बताएं कि यूं रिप्रोडक्शन होती है, ऐसे शादी ब्याह होते हैं हमारे यहाँ पर, और यूं एक बच्चा पैदा होता है, और वो गट्स को यूं अलग नहीं किया जाता, वो दो में डिवाइड नहीं होते बल्कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर पैदा होते हैं। तो जी मैंने बताया वो वक्त से 4 मिनट ऊपर ले लिए, तो आज का लेक्चर जी यहीं पर हम इसको अख्ताम पजीर करते हैं, इसकी कुछ टेक्स्ट है इसको आप देख लीजिएगा, और एक जो नो बाउंड्री प्रपोजल है इसके बारे में यूट्यूब पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री 50 मिनट की मौजूद है, स्टीवन हॉकिंग खुद है उसके अंदर, हेटॉग है, हार्टल है, ये तीनों लोग हैं जो फादर है उसके, और इस लिटरेचर को भी आप देख लीजिएगा, और आखिर में बस मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये दानिश सिरा का भी, और बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर्स का एहतमाम करने के लिए, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करने के लिए, खास तौर से जो हमारे उस्ताद हैं रेहान यूसुफी साहब और उनकी सारी की सारी मिलकर साथ साथ टीम का भी बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। इस वक्त ज़ाहिर है कि जिस हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, ना हम आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे सकते हैं, ना आपको गुलदस्ता पेश कर सकते हैं, बस आपके लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह
जी
ताला
सबसे बड़ा
जिस मेहनत से आपने ये पूरा काम किया, यानी यहाँ लेक्चर देना तो असल में एक हिस्सा है उसका, असल में तो आपकी तसनीफी काम है, तहकीकी काम है, जिसकी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे इल्म में नहीं है कि मुसलमानों में से किसी ने इस नौयत का काम अभी तक कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये काम जिस तरह हमारे लिए मुफीद साबित हुआ है, और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह जब किताबी शक्ल में ये इशात होगी। लेकिन खास तौर पे यहाँ लेक्चर देने के लिए जो आपने वक्त निकाला वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आपकी हमारे लिए ऊपर एक एहसान है, ज़ाती तौर पर मेरी बड़ी लर्निंग हुई है, मैं इन
वैसे
चीज़ों को
बात
पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जाहिर है कि जब कोई शख्स एक मामले में बहुत तहकीक करके चीजों को बयान करता है, पढ़ाता है, तो फिर उससे इंसान की लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो मुझे यकीन यह है कि इंशाल्लाह आपका ये काम हमारे साथियों के लिए भी यकीनन मुफीद हुआ होगा, मेरे लिए तो 100% हुआ है, और फिर बहुत
अल्लाह
से
का
दूसरे
शुक्र।
लोग भी इससे इस्तेफादा करेंगे, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस चीज की जरूरत है कि जिस सतह पे चैलेंज दरपेश है उस सतह पे जाके जवाब दिया जाए। तो आपने उस मुश्किल काम को, और मैं समझता हूँ बहुत सारी किताबों के मुताले से हमें उसकी जो तलखीस थी उसको गोया के बचाते हुए आपने उस सबको हमारे सामने रख दिया, तो मैं पूरे इदारे की तरफ से, इंजार की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और तमाम सामईन की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये पूरी सीरीज आज तमाम हुई है और इसमें हमारी बड़ी लर्निंग हुई है, बल्कि वो जो आज वर्टिकल टाइम वाली बात थी उससे मैं समझता हूँ कि खुदा के ابدی اور اصلی ہونے کے تصور کو بھی سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس میں مدد ملی. اور یہ جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ خدا کے علم کے حوالے سے, تقدیر کے حوالے سے جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں, وہ اصل میں ٹائم کے مسئلے کی وجہ سے ہیں کہ خدا جو ہے, چونکہ اگر میں اسی اصطلاح کو مستعار لوں تو وہ ورٹیکل ڈائمینشن میں موجود ہے, وہاں پر وقت اس طرح نہیں گزرتا. خدا ایک ہی جگہ رہتے ہوئے, یعنی یہ سب الفاظ میں بول رہا ہوں, اس مفہوم میں نہیں بول رہا جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں, یعنی خدا وقت سے بلند ہو کے ماضی حال مستقبل کو یکساں طور پہ جانتا ہے. تو اس کو سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں بہت مدد ملی ہے. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ, اور ان شاء اللہ امید یہ ہے کہ جی جی
جانے سے پہلے بس میں ایک لفظ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ سے جو میں نے ایک چیز سیکھی ہے اس کو میں ایک لفظ میں بیان کر دوں, اور وہ مجھے بہت لیٹ جا کر احساس ہوا اس چیز کا اپنی زندگی میں, اور آپ کا اس میں خاص ہاتھ ہے. آپ نے مجھے ہمیشہ یہ بات سمجھائی ہے کہ جتنا علم اور یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ پر ضروری ہیں, خدا تعالیٰ کے اس مقدمے کو اور اپنے سارے جو جو مذہب ہے اس کو ریشنلٹی پر بیس کرنا بہت ضروری ہے, لیکن آپ نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ایمان اور عمل صالح یہ اصل چیز ہے, جس میں پھر جو ہم میں سے بہت سارے لوگ بشمول میں عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان چیزوں میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ آپ اگر اس پر ایک لیکچر دے دیں, آپ نے پہلے بھی بہت کام اس پر کیا ہوا ہے, لیکن ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرا دیں تو یہ پھر میرا کام مکمل ہو جائے, ابھی میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ.
جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں. میرا تو دیکھیے کام ہی یہی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ آپ جیسے انٹلیکچوئلز بہت موجود ہیں جو علمی سطح پہ یا اسکالرلی سطح پہ کام کر رہے ہیں, اور میری شاید وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے. میری کوئی تھوڑی بہت حقیر سے خدمت ہے, تو اسی میدان میں ہے کہ لوگوں کو عمل کی طرف متوجہ کروں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق, مخلوق کے معاملے میں انسان صحیح جگہ پڑا ہو. تو آج بھی میں نے ایک لیکچر دوپہر میں دیا ہے, وہ میں نے شیئر کر دیا احباب سے, اس میں آپ کے حوالے سے بات شروع کی ہے, اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ اصل میں ہمیں جہاں الٹیمیٹ قرآن مجید لے کے جاتا ہے کہ علم سے وہ شروع کرتا ہے, اور نفسیات ہے جس میں تبدیلی آنی چاہیے, کیونکہ پھر یہی نجات کو یقینی بناتی ہے. تو انشاءاللہ میں تو اگلے ہفتے میں نے اپنا سیریز کا سلسلہ روک رکھا تھا آپ کے لیکچرز کی وجہ سے, اب میں شروع کروں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں میں یہی بیان کر رہا ہوں. اور بہت آپ کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے, اور مجھے یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو کتاب ہے ضرور ہمیں بتائیے گا جب شائع ہو, تو ہم انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے, اور وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور سارے لوگوں کا, سارے سامعین کا جنہوں نے اتنی وقت لگایا. میرے خیال میں بہت مشکل ہوتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے لیکچرز اٹینڈ کرنا, آپ سب کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ مستقل موجود رہے, اتنے طویل لیکچرز آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سنے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.